इल्म का मुजाकरा करते रहना चाहिए जी। कोई और चीज़ जो कल के सेशन में थी आप इनको बता दें, उसका जो क्लास में 3-4 घंटे पहले बात करो जी। आप कल थोड़ा लेट आए थे, खैरियत थी शायद निशात? कोई मजबूरी ही होगी, वरना मेरा तो नहीं ख्याल कि आप कभी भी लेट होते हैं। अच्छा जी, तो जितना आपने सुना उसमें से कोई बात? असल में सबसे जो मेरी नज़र में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ना, वो हमें इस कोर्स के दौरान ये लेना है कि हमारा दीन मुकम्मल है। और इबादत करते वक्त ये सोचें, कितनों को नमाज़ पढ़ते हुए या इबादत की कैफियत महसूस हुई वो हैंड रेज करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सादी, आपको इस कोर्स से क्या फ़ायदा हो रहा है, ज़रा सा ऊंची आवाज़ में सबके साथ शेयर करें। दूसरा स्टैंड दें जो एक और है जी, पढ़ने और मांगने का फ़र्क नहीं पता होता ना। आप देखिए ना, इस वक्त हम बातें कर रहे हैं तो ये बातें करने का स्टाइल है ना, और अगर हमें एक दूसरे से हेल्प चाहिए हो या कुछ मांगना हो तो फ़र्क होता है ना स्टाइल। और अगर मैं मसा आपसे ऐसे, अब ज़रा सा देखिएगा ना, प्लीज़ चाय का एक कप दे दें, उसमें चीनी भी डाल दें और उसमें शुगर भी डाल दें और उसके अंदर एक ग्लास भी रख दें और उसके साथ पानी का घूंट रख दें, क्या किया मैंने? मैंने किताब में से पढ़ी है ना, ठीक है। तो दुआ जो होती है ना, वो मांगनी होती है कि अल्लाह चाय दे दे, ए अल्लाह उसमें चीनी की बजाय हनी डाल दे, बस समझ गया ना। यानी हमारी फीलिंग्स हमें बताती हैं कि हम मांग रहे हैं जी। कोई और एक शेयर कर दे। कल की शिट्टे में पहले अप्ली कर लें, बिल्कुल। यानी अल्लाह ताला से बातचीत का अंदाज़ और महसूस से होने लगे कि मैं बातें करती हूँ। और सच्ची बात है, एक सिस्टर है, उनका शेयरिंग आई थी तो उन्होंने, जी स्टूडेंट ही हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस कोर्स के बाद अल्लाह से बातें करना आ गया। और ये बहुत सारों को नहीं आता, आलिम बन के भी, ये भी याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, हम उस चीज़ को नहीं लेते। थोड़ी सी देर मुझे मौका दें विज़ आई क्यू ग्रुप के जो हमारे साथी हैं उनसे बात करने का। जी आप सब भी लिखिए एक एक जुमला कम अज़ कम कि आपको क्या मिल रहा है इस कोर्स से। और आप सारे मिल के कल की जो दुआ थी वो सब मिल के ऊँची आवाज़ से पढ़े। रब्बी आइनी अल्लाहुम रब्बी आइनी अला जिक्री का व शुक्री का, ये वाली फिर पढ़ी मांगिए। जी मांगी के पढ़ी आज की दुआ क्या थी, सब मिलके मांगे। गुड, एक बार फिर मांगे। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुत्तकीन। ठीक है जी, शाबाश, गुड। चले आज हमने क्या पढ़ना है, उससे पहले ये बता दीजिए कि हज़रत उस्मान की पर्सनैलिटी पे 3 जुमले बोले, सब बोल दें जो उनके जहन में ये रह गया उसमें से, सब एक साथ बोल दें। जेनरस, सखी, ये हमें उनके नाम के साथ एकदम सखी का लफ्ज़ क्यों याद रहा? एक बात याद रखिएगा, जो काम कभी कभार करें ना, बाज़ दफ़ा कुछ लोग बड़े ही जज्बाती होके और वो इमाम सिराज वहाज साहब जैसे किसी स्पीकर की मोटिवेशन से मोटिवेट होके $1,00,000 कर देते हैं डोनेट, वो सखी नहीं होते। वो बस एक दफ़ा इमोशनल अवेयर हो गए। सखी कौन होता है? जो बग़ैर सोचे काम करता है। तो जो काम भी आप और मैं चाहते हैं ना कि हमारे नाम का हिस्सा बन जाए, लोग हमारे उस नाम को हमारे साथ जोड़ दें, तो वो बगैर सोचे करें, खुद से पूछें। कई दफ़ा हम बहुत जोश में आ जाते हैं और कई दफ़ा हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों में कूद पड़ते हैं, लेकिन वो हमारा पैशन नहीं होती। तो करना क्या है, हमने हज़रत उस्मान से क्या सीखना है? और ये कब होता है? जब देने की बजाय लगाने की बात हो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंशाअल्लाह ताला हम कंटिन्यू करेंगे इबादात के टॉपिक को। मैं खुतबे के साथ शुरू करती हूँ, बस पेज ऐसे पलटें। आज की जो आपकी शीट है, जो आपको एक तो भी मिली है ना, लेकिन आपको था कि पिछली शीट आपके, वो बेसिकली अब आज में ढलेगी, उसमें कुछ चीज़ें मैं स्किप करूँगी, जहाँ मैं स्किप करूँ आप उसको ओवरलुक कर दीजिए, ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल से बनी और हम उसमें से कुछ चीज़ें इंशाल्लाह एज एक्टिविटी करेंगे। शुरू करूँ? सब अपने आप से पूछें, क्या वो रेडी हैं? किस लिए? जज्ब करने के लिए अल्लाह की बात को, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक साथ वाले को हल्की सी भी आहट ना हो, क्योंकि आप देखिए कि ये भी तो एक तरबियत है ना, कि मेरे साथ वाले यहाँ नहीं, अगर मेरी वजह से डिस्टर्ब, तो इंशाल्लाह मेरे घर में मेरे साथ रहने वाले भी मुझसे डिस्टर्ब नहीं होंगे। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बी यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मिम बिल खैर। इस्लाम ए टू ज़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसमें से आज जो सेशन करेंगे वो इबादात की कंटिन्यूएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, इबादात का मफहूम समझा अभी तक, इबादत की रूहानियत समझी, इबादत का एक रूहानी पहलू क्या होता है, और इसके बाद फिर हमने ये देखा कि इबादत की जान तहारत है, और तहारत दो किस्म की होती है, एक कल्बी तहारत और एक जिस्मानी तहारत। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद एक शख्स कल्बी तौर पे ताहिर मुतहर दोनों तो हो जाता है, पाक भी होता है और दूसरों को पाक करने वाला भी बन जाता है, लेकिन ज़ाहरी तहारत भी ज़रूरी है, और इस्लाम में अमाल की कबूलियत चूँकि तहारत के ऊपर है, तो लिहाजा उसके लिए ज़रूरी था कि हम इतनी डिटेल से तहारत का मौजू पढ़ते। और उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह नजस चीज़ों को भी देखा, बात जो हुई थी एंड पे वो मिसवाक की थी। कितने लोग इससे पहले मिसवाक करते हैं? कम करते हैं। कितनों को इस मौजू, कितने लोगों ने इस मौजू को सुना और उनका दिल किया कि अब हम मिसवाक करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके लिए लेने की कोशिश में थी, मुझे कहीं वो रुख नहीं लगा। मेरा दिल था कि हम क्लास में जब शुरू करेंगे इस मौजू को तो लेंगे। आप लोग क्या करें, अगर आपके पास नई मिसवाकें हैं ना, आप लाकर अपनी दोस्त को दे दें, दोस्त की आप ले लें। ये एक करंट अकाउंट होता है कि आपको अपना भी अजर मिलेगा और दूसरों का भी साथ मिलेगा। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम नेकियों के हरीस बन जाएं। आज हम इंशाल्लाह वुज़ू से शुरू करते हैं। लफ्ज़ वुज़ू हमारे कल्चर में बहुत ही एक किस्म का कह लीजिए कि मशहूर भी लफ्ज़ है, और इसके प्रोनाउंसिएशन इतने मुख्तलिफ हैं हम सब की नज़रों में कि कई दफ़ा सही नहीं बोल रहे होते। तो आपने देखा कि तहारत नमाज की शर्त है, और तहारत हासिल करने का अमली तरीका जो नमाज से पहले हासिल किया जाता है या इख्तियार किया जाता है, उसको वुज़ू कहते हैं। याद रखिए दो लफ्ज़ हैं, एक है वुज़ू वाव की पेश, और एक है वज़ू वाव की ज़बर, और तीसरा लफ्ज़ है विज़ू वाव की ज़ेर के साथ। तीनों के प्रोनाउंसिएशन फ़र्क है। आप में से किस किस को इसका डिफरेंस पता है वो हैंड रेस करें। कम को पता है, सबको नहीं पता। हालांकि जब ये चीज़ किताबु तहारा में हमने पढ़ी थी या किताबु सलात में, वहाँ भी डिस्कस हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको भी मज़ीद समझ लेते हैं कि वज़ू के या विज़ू के मानी के। देखिए लफ्ज़ वज़ू जो ना विज़ायतुन से माखूज़ है, इसके मानी होते हैं खूबसूरती और नज़ाफ़त, ब्यूटीफाई किसी भी, इसकी भी शीट खोलें, खूबसूरती और नज़ाफ़त जी। अभी आपको सारे कुछ भी नहीं बताया अभी। खूबसूरती किस चीज़ की? नमाज के लिए वुजू, जब लफ्ज़ बोले वुजू तो वुजू करना, इट्स एन एक्ट। जब वुजू कहेंगे तो वो बर्तन या वो मीन जिसके ज़रिए वुजू किया जाता है, और वुजू कहते हैं उस जगह को जहाँ बैठकर वुजू किया जाता है। ठीक है, तो क्या पता चला के खूबसूरत कर देता है, ये वुजू करने वाले को खूबसूरत कर देता है, इसलिए इसको वुजू कहते हैं। मैं आपसे इसकी असल पूछ सकती हूँ? चलिए सोचिए जरा, कोई लफ्ज़ है तो कुराने पाक में दिया के नाम का, जिया कहते हैं हम तो उर्दू में, रोशनी, वही चीज़ है ये। यानी वुजू, वुजू करने वाले के चेहरे को रोशन कर देता है। और हदीस से पता चलता है हमें कि क़यामत के दिन नबी सल्लम अपनी उम्मत को हौज़े कौसर पे वुजू के चमकते हुए, वुजू के आज़ाद से देखेंगे। इसकी शीट खोलिए ना। हाँ, आप लोग उधर से कंट्रोल कर रहे हैं, आवाज़ कहाँ से जा रही है, इसमें से कि इसमें से? मेरे में से नहीं जा रही, उसमें ज़्यादा अच्छी आती है वैसे, आपकी मर्ज़ी है। हाँ जी, कर दीजिए, आई डोंट माइंड, क्योंकि 1-2 मिनट की मुश्किल होगी लेकिन बाद में सही होगा। ठीक है, पहली बात मेरा आपसे सवाल है, आज तक कभी आपने वुजू विजू वजू करते वक्त ये सोचा था कि ये चमक है, रोशनी है? यहाँ से हम देखते हैं कि हम कितने रिवायती मुसलमान हैं। हम जो काम बचपन से करते सुनते बोलते करते कराते आए, हम उसकी असल भी नहीं देखते। मेरी नज़र में वुजू करना ऐसे है जैसे कहीं जाने से पहले तैयार होना। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ तरह से समझ दी है। हम जहाँ जाते हैं उसके मुताबिक तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, शादी पे जाते हैं। और इन सारों में एक तो फंक्शनल तैयारी है ना, एक हमारे दिल की भी तैयारी होती है। जहाँ हम बड़ी खुशी से जाते हैं वहाँ बहुत अच्छा तैयार होते हैं, बड़े दिल से तैयार होते हैं ना, हमारी नमाज का वुजू उतना ही खूबसूरत होगा जितनी खुशी से हम नमाज के लिए जाएंगे। और मेरे हाल पीछे नमाज के बारे में इतना कुछ सुनने और जानने के बाद अब हमें इसका यकीन हो गया है कि नमाज बोझ नहीं है, नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात है। तो जब भी कभी नमाज पढ़ने के लिए तैयार हों, वुजू करने के लिए, तो उस वक़्त ख्वाहिश रखें इस बात की कि मैं वुजू करने के बाद अपने रब को देखने जा रही हूँ, उसके सामने खड़े हैं। कूमु लिल्लाहि कानितीन, क्या है? अल्लाह के आगे आजिज़ बन के, कानित बन के खड़े हो जाओ। फिर आपने वो हदीस भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, याद है आपको, जो आपने किताबुस सलात में हदीस पढ़ी है तफ़ीमुस सुन्ना सीरीज़ में, कि जब हाथ धोते हैं तो हाथों के गुनाह झड़ने लगते हैं, जब कुल्ली करते हैं तो मुंह के गुनाह, नाक में डाले तो नाक के गुनाह। इस शऊर के साथ देखें, अगर आप अगला सवाल देखें ना कि वुज़ू की अहमियत क्या है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वुज़ू बहुत अहम चीज़ है। इस वुज़ू के ज़रिए से ही तो हम अपनी नमाज को कबूल करवाते हैं, बग़ैर वुज़ू के, जानबूझ के, जानते बूझते इरादतन नमाज पढ़ी जाए तो नमाज कबूल नहीं होती। फिर एक जुमला और लिख लिए कि वुजू क्या है, कि वुजू आम हालात में तो वो आज़ा और वो जगह, वो तरीका जो नबी ने सिखाया हमें, वो एक नाहुन बराबर जगह भी खुश्क रह जाए तो वुजू नहीं होगा। लेकिन हंगामी हालात में, मजबूरी के वक्त में, अगर सिर्फ तयम्मुम कर लिया जाए, फ़तयम्ममु सईदन तय्यिबा पे अमल करते हुए, तो वो भी किफ़ायत करता है। हमारे दीन की ये खूबसूरती है कि इसमें हर चीज़ का एक सलीका और हुसन तो दिया गया है, लेकिन रिवायात के नाम पर एक ही चीज़ को इस तरह से करना कि आप उस चीज़ के बाद उसकी असल को ना देख सकें और अपने तौर पे उसको करते रहें, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। करना क्या है आज के बाद, अब से बात, पहली बात है, मेरा गुमान है कि आप में से 99% लोग बावजू होंगे इस वक्त भी। हदीस में आता है कि वुजू की हिफाजत नहीं करता मगर मोमिन। मैं अपने आप को हमेशा इस क्राइटेरियन से देखती हूँ, एक तरफ कह के हर नमाज के लिए नया वुजू, जैसे आपकी चेकलिस्ट में भी है, दूसरी बात है कि हर वक्त बावजू रहना, ये दोनों चीज़ें किस बात का निशान है कि मोमिन बाशऊर होता है। वो वुजू की हालत में क्यों रहता है हर वक्त, कि गुनाह ना हो। आप देखिए कि बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं ना कि जिसको इंसान करने से पहले सोचता, अरे नहीं मैं वुजू से हूँ। कई लोग तो कहते हैं शीशा देखने से भी वुजू टूट जाता है, ये भी बड़े इश्यूज हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया वालों का टूटता है, सऊदी अरब वालों का नहीं टूटता, ठीक है? और कई लोगों के वुजू वाकई जब तक सर पे गोल दुपट्टा घुमाकर चुटिया के पीछे से निकाल कर एक मखसूस स्टाइल से ना लिया जाए, वो सोचते हैं वुजू ही नहीं हुआ, ठीक है। और बाज़ हमारे कल्चर ऐसे हैं कि जहाँ अजान के दौरान दुपट्टा सर से उतर जाए तो भी वज़ू टूट जाता है। तो ये सारी बातें बेकार हैं। अब देखिए कि पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी को उस तरह से महसूस करने लगता है, अल्लाह ताला की निगाहों से ख़ुद को देखने लगता है। तो लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जिनको आप और मैं अगर शऊर के साथ आज से भी शुरू करने लग जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के आगे के मामलात बड़े खूबसूरत होंगे। फिर इसी तरह ये जो रिवायत आपके सामने सही मुस्लिम 330 रेफरेंस भी है, वुजू नमाज की शर्त, इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो ये है वुजू की अहमियत। फिर वुजू की फजीलत क्या है? नबी सल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग वुजू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पांव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहे तो वह बढ़ा ले। बुखारी की रिवायत है 136। क्या पता चला कि क़यामत के दिन वुजू के आज़ा जो हैं वो चमक रहे होंगे, और सॉरी वो अज़ा जो हैं क़यामत के दिन दूसरों से डिस्टिंग्विश होंगे। अब सवाल पैदा होता है कि इंसान जब वुज़ू करता है तो फिर उस वक़्त उसकी कोई ख़ास हैयत भी है, कोई चीज़ ऐसी है कि जिसको ना करें तो वुज़ू नहीं रहता? तो नोट कीजिएगा, वुज़ू के फ़राइज़ बड़े अहम हैं, सोच के समझ के सुनिएगा। फ़राइज़ वो चीज़ हैं कि जिसमें से कोई छूट जाए तो काम वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम उनमें से जानते बूझते किसी का इनकार कर दें तो ये एक बहुत बड़े गुनाह की बात होगी। आपके सामने चेकलिस्ट में 7 पॉइंट्स बने हुए, नोट करते जाइए। पहली चीज़ नियत करना, लेकिन नियत कैसे होगी? दिल का अमल है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी की रिवायत नंबर 1। यानी आप वैसे सारे पानी में घुस के शावर भी ले लें, लेकिन अगर दिल में इरादा नहीं है कि मैंने वुजू करना है तो वुजू नहीं होगा। बात समझ गए? नियत का ये नहीं मतलब कि खड़े होकर आप कहें करती हूँ वुजू पढ़ नमाज़े ज़ोहर के लिए और बैठी हूँ टूटी के पास और मुंह है मेरा सिंक की तरफ। ये चीज़ें जो होती हैं ये दिल है। अमल क्या है, नियत क्या है? अमल का नाम नहीं है, इरादे का नाम है, ठीक है। फिर दूसरी ज़रूरी चीज़ है मुंह धोना, चेहरा धोना। सूरत मायदा की सिर्फ एक आयत है, अगर आप उस सारी को इस पूरे पे देख लेंगे ना, पूरे वुजू के फ़राइज़ हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि सूरत मायदा की आयत नंबर 6 में जो जो चीज़ें मज़कूर हैं वो फ़राइज़ हैं, बाकी चीज़ें सुन्नतें हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ दोनों हाथों का कोनियों तक धोना, ये भी वही आयत है। फिर सर का मसह करना, तिरमिज़ी की रिवायत 33। दोनों पांव टखनों समेत धोना, मुस्लिम 566। वुजू के अज़ा धोने में तरतीब को बरकरार रखना, ये बड़ी अहम बात है, मुस्लिम की रिवायत है 538। देखिए कई लोग हैं जो आज इस्लाम का कुरान और सुन्नत का मजाक करते हैं, मेरी नज़र में वो पांव से वजू शुरू करते हैं। सबसे पहले पांव धोते हैं जी, एक सेक्ट ऐसा है कि वो पांव धोने से लेते हैं। और जब मैंने ये तफसीर कराई थी सूरह मायदा की तो वहाँ ये बात छेड़ी थी कि देखिए कि अल्लाह ने कितना इजीली तरतीब के साथ बता दिया। फिर अज़ा को एक ही वक्त में धोना, एक ही वक्त में धोने से क्या मुराद है कि ये नहीं कि अभी जाके कुली कर आए फिर कुछ कामों में लग गए, फिर थोड़ी देर बाद गए तो जाकर नाक में पानी डाल दिया, फिर कुछ और काम के, नहीं, कंटिन्यूटी और तरतीब, ये दो चीज़ें हैं। तो क्या पता चला? बाकी चीज़ें क्या हैं? सुन्नतें हैं। मसलन वो कौन सी हैं, नोट कर लीजिए, बहुत सी हैं। फ़र्ज़ छूटेगा तो नहीं होगा वुज़ू, सुन्नत छूटेगी तो दर्जा कम हो जाएगा, और सुन्नत समझते हुए हकीर समझ के नहीं करेंगे तो गुनाह होगा। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। पहली सुन्नत क्या है? बिस्मिल्लाह से इब्तदा करना, तिरमिज़ी 25। नेक्स्ट मैं नंबर नहीं बोलूँगी। दोनों हाथों को वुजू की इब्तिदा में 3 बार धोना, सही मुस्लिम 538, 643। फिर मिसवाक करना, 22, तिरमिजी। कुल्ली करना, बुखारी 159। नाक में पानी डालना और इसे साफ़ करना, बुखारी 159। दाढ़ी का खिलाल करना, मर्दों की दाढ़ी होती है खिलाल के खलल से, दखल अंदाजी जैसे होता है, उंगलियों की पोरों को दाढ़ी में डालकर तो जो जड़ें हैं उन तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जब मुंह धोया जाए तो चांसेस होते हैं या उस चीज़ का एक एहतमाल होता है कि जड़ों तक पानी ना जाए, ठीक है, इसको खिलाल करना कहते हैं। ये तिरमिज़ी 29। फिर हर उसको 3-3 बार धोना, तिरमिज़ी 44, 45। अब आप कहेंगे 3-3 बार धोना सुन्नत है, कि अगर मैं एक ही बार धो तो क्या होगा? क्वेश्चन है, वजू हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 3 बार करेंगे तो सुन्नत है। अच्छा, 3 से ज़ायद बार करेंगे तो गुनाह होगा, सुन्नत से आगे बढ़ने वाली बात होगी। फिर कानों के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों का मसह करना, फिर पाँव हाथों और पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, तिरमिजी 2038। दाईं तरफ से धोने का आगाज़ करना, यानी स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, सही मुस्लिम 616। और आज़ाद होने में मुबालगा करना, बुखारी 136। मुबालगा करना क्या है? उंगलियों में ऐसे करना, ऐसे हलल करना और चेक करना, यानी मीन के मेक श्योर करना कि कोई चीज़ खुश्क ना रह जाए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? वैलुल लिल आकाब, तबाही है उन एड़ियों के लिए। कौन सी एड़ियाँ? जो कि खुश्क रह जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सर का मसा माथे के बालों से शुरू करके गुद्दी तक ले जाना। गुद्दी क्या? बैक, जहाँ अमूमन चुटिया बांधी जाती है, यहाँ तक, यूँ देखिए यूँ, फिर पेशानी तक वापस लाना। अब इस वक्त तो बहुत आसान लग रहा है क्योंकि स्काफ पहना हुआ है, और स्काफ उतारेंगे तो फिर बाल खराब होंगे, तो भी ऐसे ही करना है। ठीक है, ये सही मुस्लिम की रिवायत 555 और 557 दोनों रेफरेंस लिख सकते हैं आप। फिर अगली बात क्या कि वुजू के बाद सब मिलके बोलिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये तिर्मिजी 55 का रेफरेंस है। अब आप देखिए कि कभी आप सोचेंगे ना, आज उम्मत में जिन बातों पे झगड़े हैं, मसलन देखिए हमारे पाकिस्तानी इंडियन कल्चर में गर्दन का मसा इतना बड़ा इशू है कि इसकी वजह से कुछ लोगों का फिक्र हनफी बन जाता है, कुछ का शाफई बन जाता है। क्या है वो? इस सुन्नत में भी वो मौजूद नहीं। बिल फर्ज उसको आप सुन्नत भी मान लें तो वो फर्ज तो नहीं है, रुकन तो नहीं है। यानी इस वक्त जो मुझे समझ आती है बात की, कि दीन का वो वर्जन लोगों को दिखाने की ज़रूरत है कि जो हमारे कल्चर की निगाह से अलग हो। लिहाजा जो सुन्नत नबी की मिलती है उसको ले लीजिए। इन बातों पे कम से कम बहस करके लड़ाई झगड़े करते हुए उम्मत को तोड़ना, ये कम से कम अक्लमंदी का मामला नहीं। ज़रा सा वुज़ू का तरीका दोहरा लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, हम रोज़ करते हैं 5 दफ़ा, लेकिन पढ़ा भी होगा बहुत दफ़ा। तो पहली चीज़ क्या है? वुज़ू के आगाज़ में नियत करना और बिस्मिल्लाह कहना। ज़ुबान से नियत के अल्फाज कहना नबी सल्लम से साबित नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह कहना साबित है, और इसकी दलील निसाई 78, अबू दाऊद 101। सेकंड क्या है? 3 बार हाथ धोना, दायां और बायां हाथ कलाइयों तक 3 बार धोना। थर्ड स्टेप क्या है? कुल्ली करना, दाएं हाथ से मुंह में पानी डालकर 3 बार कुल्ली करना। इसके लिए ज़रूरी है कि पानी मुंह के अंदर घुमाएं, जिसको आप गागल करना कहते हैं ना, थोड़ी देर मुंह में डालिए, रिंस कीजिए अच्छी तरह से, फिर उसको थूक दीजिए। फिर फोर्थ क्या है? दाएं हाथ से नाक में 3 बार पानी चढ़ाना और बाएं हाथ से नाक झाड़ना। आप इसको समझ लें, हदीस मैं आपके सामने रख देती हूँ, और देखिए बुखारी और मुस्लिम के दर्जे की रिवायात हैं, गौर से सुनिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी बात की ज़रूरत है हमें। नाक में पानी डालने और झाड़ने में हाथ से पानी डालना और साफ़ करना काफ़ी नहीं, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि सांस के ज़रिए पानी को ज़ोर से खींचे, ऐसे जो करते हैं उसकी तरफ इशारा है, और बाहर लाएँ। फिर बाद में इसके बाद पानी डालना और झाड़ना सही नहीं होगा, सही मुस्लिम की रिवायत 561 और 560। और एक ही चुल्लू से कुली करना और नाक में पानी डालना साबित है, ये बुखारी 191 है। यहाँ से रुकिए, ये ना सोचिए कि ऑटोमेशन पे जो हम वजू करते हैं वही, इस तरीके से हमारे इंडो पाक कल्चर में 80% लोग नहीं करते। बचपन से जो तरीका सीखा सिखाया जाता है, जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं, कुल्ली भी कर ली, मुंह पे भी डाल, नाक में पानी डालने में क्या करते थे? सीधे हाथ से कुल्ली और उल्टे हाथ से नाक में डालना। कितने लोग इस तरह करते थे वजू शुरू से? मैं खुद ऐसी करती थी बचपन में, हमने भी ये सीखा था कि सीधे हाथ से कुल्ली और उल्टे हाथ से नाक में। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। एक ही पानी सीधे हाथ में पानी लिया, कुल्ली की, थोड़ा सा पानी जान पे रह गया उसको आप इधर करेंगे उसी से ना, सेम वन स्टेप पे, और पानी कुल्ली के दोबारा हाथ पानी में गया, फिर साफ पानी लिया, फिर कुल्ली की, फिर नाक में डाल दिया, और झाड़ना पड़े नाक को जो झाड़ना चाहिए तो वो लेफ्ट हैंड से है। ये चीज़ आपके सामने हदीस है, अब आपको डिटेल चाहिए हो तो बुखारी में जाके दोबारा पढ़े, लेकिन जो तरीकाकार अमूमन हमारे यहाँ है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जी नहीं, एक दफ़ा हाथ में कुल्ली, जी तीनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, कुल्ली फिर नाक में पानी, कुल्ली फिर नाक में पानी, कुल्ली फिर नाक में पानी, अगर आप 3 दफ़ा कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगर अलग अलग कर लिया
देखिए ये हदीस मैंने आपके सामने फिर पढ़ती हूँ, एक ही चुल्लू से, चुल्लू ये कुल्ली करना और नाक में पानी डालना साबित है, ये बुखारी की रिवायत है 191, यूँ कुल्ली की बाकी नाक में डाल दिया। अब ये सुन्नत है तो हमें इसके आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग क्या है, पूरा चेहरा धोना, इसमें सर के बालों के उगने की जगह से लेकर ठोड़ी तक और चौड़ाई में एक कान से दूसरे कान तक का पूरा हिस्सा जो है वो शामिल है। दाढ़ी का हिलाल करना मसनून है। अच्छा, हम लोग चेहरे को कैसे लेते हैं, मतलब अगर तसन्नो हो या तकल्लुफ हो या मतलब कोई और प्रॉब्लम है स्काफ लेने का या कुछ भी, तो बस इतना सा हिस्सा ये जो स्काफ में से दिख रहा है ये चेहरा नहीं होता। चेहरा क्या है, कमोबेश जहाँ से सर के बाल शुरू होते हैं, अब आप सब स्काफ के अंदर हाथ डाल के देखेंगे तो बालों से लेके ये भी नहीं है, यानी जो स्काफ का दिखता है ये पूरी चिन्ह है ये चीज़, और जहाँ अमूमन फाउंडेशन लगाया जाता है। अगर आप सिर्फ मुंह पे लगा लें और चिन पे ना लगाएं तो अजीब लगेगा ना, यानी कहने का होता है कि पूरे बालगे के साथ पूरे जिस्म चेहरे के ऊपर रखिए। फिर नेक्स्ट क्या है कि दोनों बाजू कोहनियों तक धोना, कोहनियाँ ये एल्बोस, पहले दायां और फिर बायां बाजू कोहनियों तक धोना, सही मुस्लिम 555 और 57, 557। नेक्स्ट है सर का मसा, गर्दन का मसा रसूलुल्लाह से साबित नहीं है, दोनों हाथों को आगे से पीछे की तरफ और पीछे से आगे की जानिब ले जाएं, फिर शहादत की दोनों उंगलियों को कानों के सुराखों में डालकर कान के अंदरूनी हिस्सों का मसाह करें, फिर दोनों अंगूठों से कान के बैरूनी हिस्सों का मसाह करें। ये भी तरीका हमारे लिए थोड़ा सा नया है। देखिए ये उंगलियां कानों में डालें, ये आपका थंब, इसको पीछे रखिए, ये देख एक ही वक्त पे भी होगा ये भी, यानी दोनों तरफ होगा, लेकिन मैं आपको ये इसमें डाला, इसको इसको करते हुए यहाँ से इसके कान के साथ से इधर लाइए और इसको सेम टाइम पे या बाद में पीछे, थंब को पीछे से आगे लाना है और शहादत की उंगली को आगे से पीछे लाना है। इधर एक वर्कशॉप करेंगे हम इंशाल्लाह, जिसमें प्रैक्टिकली पूरी नमाज का तरीका और वजू का तरीका करके देखते हैं। वजू करने की जगह इतनी नहीं है, वरना तो यहाँ हम वजू प्रैक्टिकल खुद भी करके देखें इंशाल्लाह ताला, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, वजू जब कर रहे हैं दोनों पाँव टखनों तक धोना, पहले दायां और फिर बायां पांव टखनों तक धोना, बुखारी 60 और 165, अबू दाऊद 97, तिरमिजी 41। पांव धोते हुए उंगलियों का खिलाल करें, अबू दाऊद 142, ठीक है। तो वही राइट साइड और लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। अब वजू पूरा कर लिया तो दुआ क्या है आपके सामने लिखी है, मिल के पढ़िएगा बल्कि मांगिए। गुड, शाबाश। क्या पता चला इस दुआ से, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। ए अल्लाह, मुझे तौबा करने वालों और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों में से बना दीजिए। कितनी प्योरिटी का एहसास है इस एक दुआ में। एक और दुआ भी आपके सामने, वो भी लिखी हुई है, नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए, मिलके पढ़िए। इस फिर एक दफा शोर से पढ़े। गुड, नीचे लाइन है, इस पे तर्जमा लिखिएगा, पाक है अल्लाह तेरी जात अपनी तारीफों के साथ, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और तेरे हजूर तौबा करता हूँ। ये दुआ आपको मिलती है और आप इसको भी पढ़ सकते हैं, दोनों में कोई एक पढ़ें। ये रिवायत निसाई की भी है, हाकिम है, 564 है। क्या पता चला कि नमाज एक शौरी अमल का नाम है, तो वुजू और वुजू के बाद की और उसके साथ साथ ये जो दुआएं हैं हम पढ़ रहे हैं, ये बताती हैं कि हम पूरी जहनी तौर पे अल्लाह के हुक्म से तैयार हैं। तो ये तो था वुजू का तरीका, इंशाल्लाह हम किसी मौके पर इसकी वीडियो भी देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको सीखें। अहम बात क्या है कि वुजू तो हो गया, लेकिन टूटता कैसे है। चंद अहकामात, ये एक तस्कीर की खातिर हम लोग पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ये अमल दिन में कई दफ़ा करने का होता है, इसलिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ज़रा सा तेज़ बोलूँगी, कोई छुट गई बात तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वुज़ू के अहकाम में सबसे पहली चीज़, वुज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है। नंबर एक, दोनों रास्तों यानी आगे और पीछे से प्राइवेट पार्ट में खारिज होने वाली चीज़ों से, मसलन हवा, मनी, पेशाब, मजी और पखाने से, तिरमिज़ी 74। नंबर दो, गहरी नींद जिसमें इंसान होश और फहम से बेगाना हो जाए। हल्की सी नींद जो बैठकर या खड़े होकर आए, इसे वजू नहीं टूटता, तिरमिज़ी 77। तो ये जो आप क्लास में सोते हैं, इससे वजू टूटता? इस कोर्स में कोई सोया आज तक? नामुमकिन है, कोई सो भी नहीं सकता। हाँ, इसमें क्या आता है, जैसे गाड़ी में बैठे नैप आ जाता है ना, झटका आ जाता है, कभी आप आंखें बंद करते हैं तो इट्स ओके। बेसिकली सोने से वजू नहीं टूटता। जब हम लेटते हैं ना, तो हमारे जिस्म के सारे जोड़ ढीले हो जाते हैं, तो जिस्म से हवा खारिज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सोना नहीं, नवाक़े से वज़ू नहीं है, पर लेट कर रिलैक्स्ड होकर सोने में हवा निकलने की वजह से टूटता है। बात वाज़े? फिर नेक्स्ट देखिए, शर्मगाह को छूने से, तिरमिज़ी 82, अबू दाऊद 181। यहाँ फिर मदर्स विद किड्स का इशू है, जो बात पीछे हमने थोड़ी सी छेड़ी थी, क्या बच्चे का डायपर चेंज करने से वज़ू टूट जाता है? पीछे नजस में हमने पढ़ा था कि नजस को हाथ लगाने से नहीं टूटता, बट प्राइवेट पार्ट को छूने से टूटता है, अपने को या किसी को। अब माँ बच्चे को चेंज कर रही है, अगर वाइप्स यूज़ कर रही है और सिर्फ गंदगी साफ़ हो रही है, अगर इवन हाथ को गंदगी भी लग जाए, तो माँ का वुजू नहीं टूटेगा, अनलेस बच्चे के प्राइवेट पार्ट को डायरेक्ट हाथ ना लग जाए। बात वाज़े? यानी वुजू, बाज़ माएँ सर्दियों में बहुत ये सवाल पूछती हैं, नॉर्वे में ख़ास तौर पे, कि बार बार वुजू करना पड़ता है ऐसे। तो बहरहाल ये है कि बच्चे के जिस्म को अगर हाथ नहीं लगता तो नहीं टूटता। हाँ, बग़ैर कपड़े के अगर हाथ लग जाए किसी के भी, तो फिर टूट जाएगा। अक़ल के जाते रहने और शऊर के मफकूद होने से, चाहे नींद से, जुनून, पागलपन वगैरह, या नशे या दवा से, यानी बस अक़ल चली जाए। नेक्स्ट, कुबुल या दुबुर, वही बैक एंड फ्रंट के अलावा किसी और रास्ते से पेशाब और पखाने का निकलना, यानी ये भी चीज़ इंसान के वज़ू के टूटने की ज़रिया बनती है। फिर गुसल वाजिब करने वाली चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, मसलन जिमा, शौहर बीवी का ताल्लुक, और इसमें तो किसी का कोई इख्तलाफ भी नहीं है। कहने की बात क्या हुई कि वज़ू करने के बाद इंसान एक ऐसी शऊर की कैफियत में आ जाता है कि फिर नहीं। फिर एक और चीज़ है कि मुर्तद हो जाए, अगर कोई इस्लाम छोड़ देता है तो भी उसका वज़ू टूट जाता है। नेक्स्ट थिंग, ऊँट का गोश्त खाने से, मुस्लिम 802 है ये रेफरेंस, यानी सही मुस्लिम 802, ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। तो लिहाजा अगर कोई पका रहा है तो उसको चाहिए कि बता दे, ताकि घर वाले को वज़ू की फिर कैफियत का यकीन रहे। फिर याद रखिए कि जिसे अपनी तहारत का यकीन हो लेकिन नापाक होने का शक हो जाए, तो इसे अपने यकीन पे कायम रहना चाहिए। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 805 की। अब सवाल पैदा, किन चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता? देखिए कितना प्यारा दीन है, प्लस माइनस में आपको चीज़ें बताता है। नंबर एक, ऊँग आने से, बीवी का बोसा लेने या महज उसे छूने से, तिरमिज़ी की रिवायत 176, मुस्लिम 476, और इसकी दलील कौन है? नबी सल्लम खुद हैं। क्या आप अपनी बीवी के साथ इस तरीके से मोहब्बत का इजहार करते हैं और बग़ैर वज़ू किए दोबारा मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं? फिर इसी तरह हदस का महज शक होने, हदस कहते हैं गंदगी को, यानी शक हो रहा है कि हवा निकली है कि नहीं। बस दफ़ा कुछ लोगों को हर वक्त डाउट्स आते हैं, यूरिनेशन के ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ऐसे शक में भी इंशाल्लाह वुज़ू नहीं टूटेगा। फिर नकसीर से, नाक से जो खून बहने लग जाती है कभी गर्मी की वजह से, उससे भी नहीं टूटता। फिर सींगी या पछने लगवाने से, जिसको आज के दौर में हम हिजामा या कपिंग कहते हैं, इससे भी नहीं टूटता। कह कहा लगाने से, हंसने से भी नहीं टूटता, लेकिन कह कहे कम लगाने चाहिए। याद रखिए, अपने कह कहों पर भी काबू पाना, इंशाल्लाह अल्लाह हम आपको उसकी जजा देगा। फिर आग पर पकी हुई चीज़ खाने से, बुखारी 208 है, यानी आप खाना खा के बैठे, काफ़ी देर खा ली, उसके बाद वो मुंह में कोई भी खाने का टेस्ट नहीं है, इट्स ओके, पानी पी लिया उसके बाद, तो वज़ू नहीं टूटेगा आपका इनसे। फिर महज शर्मगाह को देखने से, निगाह पड़ गई, बच्चे को देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो इससे भी वज़ू नहीं टूटता। फिर इसी तरह ऊँटनी का दूध पीने से, शर्मगाह के अलावा किसी और हिस्से से खून के निकलने से, या अबू दाऊद 198 है। अब सवाल पैदा होता है कि वज़ू करने के दौरान कुछ काम मकरूह भी हैं? कि आप कोई काम कर लें तो पसंदीदा नहीं, तो पहली चीज़ 3 से ज़ायद बार किसी उसको धोना, ये इब्ने माजा की रिवायत है 422। ना पाक जगह पर बैठकर वज़ू कर लिया, ये भी पसंदीदा नहीं है। पानी ज़ाया किया, खेलने ही लग गए, ये भी दुरुस्त नहीं है। वज़ू के एक से ज़्यादा मसनून आमाल को जानबूझ के तर्क कर दिया कि कोई बात नहीं ये तो फ़र्ज़ नहीं है। और इसी तरह औरत के वज़ू से बचा हुआ पानी इस्तेमाल करना, आप कहेंगे ये कैसे होता है? ये तब होता था जब पानी इतना कम होता था, एक ही बर्तन से शौहर ने वज़ू किया है, बाद में बीवी कर रही हैं या दोनों साथ कर रहे हैं या घर में एक से ज़ायद लोग हैं, तो इस सूरत में भी ये सूरत हाल पेश आ जाती थी। सवाल पैदा होता है कि वुज़ू कब वाजिब है, क्या चीज़ें हैं जिसके लिए वुज़ू करना लाजिम है? नंबर एक, फ़र्ज़ और नफिल नमाज के लिए, सही मुस्लिम 535 इसकी दलील है। नंबर दो, बैतुल्ला का तवाफ़ करने के लिए। अब आप तवाफ़ कर रहे हैं, वुज़ू टूट गया, क्या करें? निकलिए, वुज़ू करके आइए, दोबारा जहाँ से जिस चक्कर से शुरू किया था, इवन जिस जगह से शुरू किया था, वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उस वक़्त नहीं मौका मिला, कोई बात नहीं, दोबारा जब हरम में जाएंगे, वो जो पूरे 3 चक्कर थे वो पूरे हो गए, चौथे से शुरू कीजिए, नए सिरे से कर लीजिए, पहले ज़ाया नहीं होते। लेकिन वुज़ू की हालत में तवाफ़ होता है, और कुरान मजीद को बाज़ाब्ता तौर पे जब बंदा छूता है पढ़ने के लिए मुसहफ़ को, उस वक़्त भी वुज़ू से होना पसंदीदा है, फ़र्ज़ नहीं है, पसंदीदा है। सूरत वाक़िया 79, हालांकि ये आयत फ़रिश्तों के लौहे महफूज में रखे हुए इस नुस्खे को छूने के मुतल्लिक है, लेकिन आप कम अज़ कम इसको ये कह सकते हैं कि अदब का तकाज़ा है, जानबूझ के बेवज़ू कुरान को ना छुआ जाए। सख्ती नहीं करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, इख्तलाफ़ नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट थिंग क्या है कि क्या चीज़ें हैं जो बग़ैर वज़ू के कर सकते हैं? ये बहुत अहम टॉपिक है इंडो पाक कल्चर के लिए, क्योंकि हमने इतनी पाबंदियाँ लगाई हैं कि हम नेकी छोड़ देते हैं इसलिए कि वज़ू नहीं है। तो क्या चीज़ें? मुस्तहब तो है, इट्स रिकमेंडेड, पसंदीदा तो है, लेकिन अगर कोई ना कर सके तो फिर गुनाह नहीं होगा। तो नोट कर लीजिएगा, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नंबर एक, ज़िक्र इलाही के वक्त, अबू दाऊद की रिवायत 17 है, यानी सहाबा कराम बग़ैर वज़ू की हालत में भी जिक्र कर लिया करते थे। फिर हर नमाज के वक्त, मुस्नद अहमद जिल 2 460, क्या पता चला कि हर नमाज के लिए नया वज़ू करना शर्त नहीं है, पसंदीदा है बहरहाल। फिर गुस्ले जुनाबत से पहले, बुखारी 248। सोने से पहले वज़ू करना, बुखारी 247। किसी को हदीस याद है कि रात को सोने से पहले अगर वज़ू किया जाए तो उसकी क्या फजीलत है? जी आप बताइए। हर करवट पे फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है, और ताहिर सूरत में सोना फरिश्तों की दुआएं लेना है। ठीक है, ये भी उसी में अमाल ऐसे कि फरिश्ते उतरे, उसमें ये हदीस हमने डिटेल से पढ़ी थी। बहरहाल, फिर हालत जुनाबत में सोने से पहले, यानी वज़ू गुसल का भी इरादा नहीं है तो सिर्फ वज़ू कर लिया जाए तो ये पसंदीदा है, ये बुखारी 682 है। हालत जुनाबत में खाने से पहले, मुस्लिम 305, इब्ने माजा 591। रमज़ान है, सहरी के लिए उठे, अब वक्त इतना नहीं है कि शावर ले, शावर लेते हैं तो सहरी का वक्त निकल जाएगा, तो पसंदीदा क्या है कि पहले वज़ू कर लीजिए, खा लीजिए, फिर गुसल करके नमाज अदा कर लें। ठीक है, फिर इसी तरह एक ही रात में दूसरी बार मुबाशरत से पहले, मुस्लिम 308 है, यानी एक शौहर अपनी बीवी से एक से ज़ायद बार अगर ख्वाहिश रखता है तो दोनों ख्वाहिशों या दोनों दफ़ा उस अमल के दरमियान में भी गुसल फ़र्ज़ नहीं है, वुज़ू कर ले तो पसंदीदा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैयत को उठाने की वजह से, डेड बॉडी को जो कंधा देते हैं हमारे कल्चर में कहते हैं, तो उसके लिए भी पसंदीदा तो है, बावजू होना शर्त नहीं है, तिर्मिज़ी 993। फिर क़ै आने के बाद, यानी क़ै आ गई तो क्या करें, पसंदीदा के कर लें, नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह उस दर्जे की बात नहीं है, और इसकी दलील सही तिर्मिज़ी 76। फिर नेक्स्ट, कुरान मजीद को पकड़ने के लिए मौता 419 और निसाई 57 है, जिल्द नंबर 8 में। आप देखिए कितनी बारीकियां हैं ना हमारे दीन में, तो इसका ख्याल रखना है। आज वक्त के साथ साथ जो कल्चर आता जा रहा है ना, जिसको अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसान करे, वो है आई डोंट केयर। आप बच्चों से कोई बात तो करेंगे तो आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड, इट्स ओके। ये भी कंधे उचकाने का जो अंदाज़ है ना, ये तकजीब की एक इब्तदाई सूरत होती है। क्यों केयर नहीं करते? कल लोग कहेंगे आई डोंट केयर, वुज़ू के बगैर नमाज पढ़, इट्स ओके। अल्लाह नोज़ माई इंटेंशन, अल्लाह को मेरे दिल का पता है। कई लोग ऐसी बातें कई मौक़ों पे कहने लगते हैं, तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने दीन के मामले में जो बेसिक्स हैं उसके डिफेंडर बन जाएं, हम उसका इस्ला उसकी उसकी केयर करें, क्योंकि इसके बग़ैर क्या होगा, हम फिर ऐसा ऐसा बड़ी बड़ी चीज़ों से भी केयरलेस होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी के ईमान की दलील क्या है कि शुबे में डलने वाली चीज़ों को भी छोड़ दे हराम के डर से, कि कहीं ये हराम ना हो। फिर इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जब वज़ू की बात हुई तो थोड़ी सी मसह की भी बात करनी ज़रूरी है। मसह क्या होता है और कैसे करते हैं, तो मोज़ों पे मसह करना। पहली बात है, मोज़ा किसको कहते हैं? आप कहेंगे किसको नहीं पता किसको कहते हैं। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि इस पे भी फ़िक्ह में दो इश्यूज़ हैं, तो समझ लीजिएगा इसको। मोज़ा कहते हैं चमड़े या किसी और बनी हुई चीज़ के, यानी चमड़े या किसी और चीज़ के बुने हुए कदम, इसको खफ भी कहते हैं, खुफ खाफा यानी मोज़ा कहते हैं। फिर जुराब किसको कहते हैं? कॉटन या ऊन से बने हुए कदम को जौरब या जुराब कहते हैं। सिंपल सी मिसाल दे दूं कि हर वो कपड़े की, चमड़े की, रबड़ की, प्लास्टिक की वो चीज़ जो इंसान अपने पाँव पे पहन ले जूतों से पहले, तो उसको मोज़ा कहते हैं। कपड़े का भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, चमड़े का। आज हमारे कल्चर में मारूफ फ़िक्र हनफ़ी जो है, लोग उस पर ही अमल करते हैं, उसमें इतना बड़ा इशू है। मैं एक ऐसी मस्जिद को जानती हूँ दुनिया में कहीं, सिर्फ इस वजह से अच्छी खासी चलती चलाती मस्जिद जिसमें सारे अंकल्स भी आते थे, यंग लड़के भी थे, उस मस्जिद से कट कर अंकल्स ने अपनी एक और मस्जिद थोड़े से फासले पे बना ली। हुआ क्या कि यंग लड़के जो पढ़े लिखे, जो मतलब कह रही थी कुरान सुन्नत का इल्म ले रहे थे, वो बेचारे उस मस्जिद में रह गए और अंकल्स नुमा सारे बड़े बड़े दूसरी तरफ चले। क्यों? सिर्फ एक इशू था, मोज़ों का मसा, कि जो इमाम लड़का इमाम था वो मोज़े पहन कर नमाज़ पढ़ाता है और वो मोज़ों पर मसा करता था, तो ये कहते थे कि इसका तो वज़ू ही नहीं हुआ। क्यों? मोज़े वो कहते हैं सिर्फ चमड़े की जराबों को, इसको चिरमी कहते हैं, चरम चरम कहते हैं लेदर को। तो बहरहाल हम इतनी सख्ती में नहीं पढ़ते, ना इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। क्या मोज़ों पे मसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और वुज़ू की सूरत में मोज़ों पर मसा किया जाता है। बुखारी 206 है। कितने दिन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोज़ों पर मसा करने की मकदार क्या है, यानी सॉरी, क्या मोज़ों पे मसा किया जा सकता है? किया जा सकता है। सवाल पैदा होता है कि मोज़ों पर मसा करने की मकदार क्या है, कब तक? ये भी एक सवाल थोड़ा सा समझने का है, यानी इसको अगर आपकी शीट में थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगे तो इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, कि मोज़ों पर मसा करने के जवाज़ की क्या शरारत है। क्वेश्चन नंबर एक, मोज़े वुज़ू की हालत में पहने हो, क्वेश्चन है ये, तहारत के बाद पहने, पाँव भी धोया, बुखारी 206 इसकी दलील है। फिर मोज़े पाँव के इन हिस्सों को छुपाते हों जिनका धोना वुज़ू में फ़र्ज़ है, और ये कहाँ तक होते हैं? अबव द एंकल, जो घुटने जिसको बोलते हैं। आजकल एक औरतें सॉक्स पहनती हैं जो बिल्कुल पाँव के नीचे टखनों तक रहता है, ये नहीं, घुटने तक भी वजू जो जो मतलब धोया गया होगा पाँव। फिर मोज़े इतने मोटे हों कि इनके नीचे से पाँव का चमड़ा नज़र ना आता हो, क्या कहते हैं हम उसको? स्टॉकिंग्स, पतली सी, आजकल लेडीज़ ने पूरी पूरी टांगों पे पहनी हो तो पता भी नहीं चलता कि वो कुछ है, स्टॉकिंग नहीं। बाकी पतली स्किन, ब्राउन ब्लैक कोई सॉक्स जिससे सब छुप जाए, उसके ऊपर मसा हो सकता है। दोनों मोज़े पाक चीज़ से बने हों, यानी हराम मटेरियल से ना बने हों, और दोनों मोज़े दुरुस्त हो, यानी एक मोज़ा पहनना है एक नहीं पहनना तो भी नहीं होगा, दोनों मोज़े पहनना शर्त है। अब सवाल पैदा होता है कि मोज़ों पर मसा करने की मकदार क्या है, तो मोज़ों पर मसा करने के लिए दोनों पाँव की उंगलियों से लेकर पिंडली के ऊपर तक का हिस्सा शामिल है, यानी जहाँ तक भी जाता है। किया कैसे जाए, ये भी बहुत सवाल है। कई लोग पूरे पाँव के ऊपर हाथ पाँव फेर रहे होते हैं, जैसे जैसे पानी फेरने की बात है। और यहाँ मुझे हज़रत अली का वो कॉल याद आ रहा है जो आप नोट कर सकते हैं इसका तरीका देखने से पहले। कहा करते थे कि अगर दीन में अक़ल का दखल होता, अक़ल का, कि आई विल डू वट एवर आई थिंक इट्स गुड, तो फिर पाँव का मसा ऊपर की बजाय नीचे से होता। आपने मोज़े पहनने में आप यहाँ से बाहर जाती हैं, दूसरे रूम में जाते हैं, उम्मीद क्या है कि आपके सॉक्स के नीचे कुछ लगेगा, तो जब आप अगली नमाज से पहले मसा करें तो आपको नीचे हाथ फेर लेना चाहिए ना, नीचे नहीं फेरते, समझे, ये पाँव हाथ नहीं पाँव है, ऐसे पानी लिया और ये तीन उंगलियों से ऐसे एक दफ़ा, दैट्स इट, ऊपर की टॉप पे हाथ, पूरे पाँव को रगड़ना मरोड़ना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह से मोज़ों पर मसा करने के लिए अफजल है कि दाएं को मुकद्दम किए बगैर दोनों पर एक ही साथ मसा किया जाए, यानी दोनों हाथों से इकट्ठे दोनों पे भी किया जा सकता है, दोनों हाथों की खुली हुई उंगली से दोनों पाँव की उंगलियों से लेकर पिंडली के ऊपर तक मसा किया जाए। मोज़ों के निचले हिस्से या पीछे वाले हिस्से का मसा करना सुन्नत नहीं है और चमड़े के मोज़ों का धोना मकरूह है और एक बार से ज़ायद मसा करना भी मकरूह है। चलिए ये तो छोड़िए, क्या पगड़ी, तो हम तो पहनते नहीं, तो क्या पगड़ी पर मसा किया जा सकता है? जो कुछ कल्चर ऐसे हैं ख़ासतौर पे पेशावर में और कुछ देहातों में, बहुत बड़ी कई घस लंबा कपड़ा होता है, उसको लपेटी जाते हैं और फिर सर के ऊपर रखते हैं, तो पगड़ी पर मसा जायज़ है मगर शराइत के साथ। अबू दाऊद 147 और तिरमिज़ी 100 इसकी दलील है। आप ना पगड़ी पहनते हैं ना आपको उसकी ज़रूरत पड़नी है, इसलिए इसको छोड़ दें, लेकिन आपको इसकी फ़िक्र होनी चाहिए स्काफ़ की। क्या आप स्काफ जो है उसके लिए करते हैं? पहले पगड़ी को देखिए, शराइत क्या है। तहारत सुगरा यानी वुजू के लिए मसाह किया जा रहा हो, यानी जुनाबत नहीं, गुसल नहीं, वुजू के लिए, तो फिर पगड़ी के ऊपर मसा हो सकता है। तहारत पानी से हासिल की जा रही हो, सर के उस हिस्से को छुपाए हुए हो जिसे आमतौर पर पगड़ी से छुपाया जाता है, और पगड़ी पहनने वाला मर्द हो, क्योंकि ये औरत के लिबास का हिस्सा नहीं है। वैसे अभी तक फैशन में पगड़ियाँ क्यों नहीं आई? आज आ गई हैं, मुबारक हो आपको, आपने मर्दों के बराबर कंधे से कंधा मिला लिया। ये मर्द कब दुपट्टे लेंगे? वो भी आ गए, मैं जा रही हूँ, आप मुझे ऐसी बुरी बुरी खबरें सुना रहे हैं। मर्द गरार जी, दूल्हा गरारा पहनने लगे। एक बोले जी, यानी आप देखें, और कोई पूछता है, कोई क्वेश्चन है इस पे? देर इज एनी ऑब्जेक्शन? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। और उस मर्द पे और उस औरत पे अल्लाह के नबी की तरफ से जो वईद है वो मैं मुँह से लेना नहीं चाहती, रहमत से दूरी कह लीजिए कम से कम, कि जो औरत मर्द की तशबीह करे और मर्द औरत की तशबीह करे। तो कल दुपट्टे क्या साड़ियाँ भी बांधेंगे और जो भी करेंगे, और नुमाया होने के शौक में कुछ भी कर लें, सुन्नत में इतनी ताकत नहीं है हमसे मनवा सके जो फैशन में है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको, पगड़ी के अक्सर हिस्से का मसा करना ज़रूरी है। अब आगे आपका मेरा इशू स्काफ का, क्या स्काफ या दुपट्टे या चादर पर मसा किया जा सकता है? तो इसके लिए नोट कीजिएगा, इस पर क्या तरीक़ेकार है। आम तौर पे देखिए कि हमने अब जो स्काफ इतना मुश्किल बना लिया, 10-10 पिन्ने लगा कर, उसको इतने बल देकर, और दोबारा वो पहन ही नहीं सकते, तो ये एक किस्म का फिर अपने ऊपर मुश्किल डालना है। सीधी सी बात क्या है कि स्काफ या दुपट्टे को खोला जाएगा, सिंपल सी बात है, खोला जाएगा। ये नहीं, अब जैसे इस वक्त आप सब ने स्काफ्स लिए हैं, और अगर आप जोहर की नमाज़ के लिए वुजू करेंगे स्काफ उतरेगा, बस सीधी सी बात है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं। क्वेश्चन क्या है कि फिर पगड़ी पे क्यों हो जाता है? तो पगड़ी की दलील मौजूद है, और साथ ही आपको तय कि मर्दों का है हिस्सा। सहाबियात दुपट्टे लेती थी ना अल्लाह के नबी के दौर में, खिमार भी थी, चादर भी थी, उसकी कोई दलील नहीं है। तो लिहाजा अगर हम आज इतना सा भी छोटा सा काम नहीं कर सकते, तो फिर आप ये बताइए कि कल अल्लाह के बड़े हुक्म कहाँ से मानेंगे। ठीक है, तो लिहाजा इसको हल्का सा ढीला करें, करेंगे, बाज़ लोग कहते हैं बाहर है, ओपन में, हरम में, दुपट्टा ढीला कीजिए, मुंह के आगे घूंघट की तरह करके, अंदर हाथ करके पलटाइए, और उसके बाद दोबारा जब मौका मिले उसको टाइट कर लीजिए, इतनी सी बात है। फिर उसके बाद मसह की मुद्दत कितनी है, ये अहम सवाल है। मसह की मुद्दत मुकीम, जैसे अब आजकल आप और मैं इधर रुक रहे हैं, बैठे हुए हैं इसी शहर में हैं, तो एक दिन और एक रात, यानी 24 आवर्स कह लीजिए, और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात है, लेकिन शर्त यह है कि कसर की मुसाफत का सफ़र हो। मुस्लिम 3639, क्या पता चला मुसाफिर 3 दिन तक मसा कर सकता है। सफ़र होते थे बेचारे, घोड़ों पे, ऊँटों पे जाते थे, सहराओं में पानी भी नहीं था, तो मसे की इजाज़त थी। इसी तरह जिस शख्स ने सफ़र में मसा किया फिर मुकीम हो गया, या मुकीम होते हुए मसा किया फिर सफ़र किया, तो इसके बारे में क्या होगा, सफ़र किया या मसे की इब्तिदा के बारे में शक हो तो मुकीम की तरह मसा करेगा, यानी 3 दिन के अंदर घर आ गए तो फिर खोल कर पाँव धो लेंगे और फिर मसा करेंगे। फिर उसके बाद एक और सवाल है, अल्लाह ना करे किसी को इसकी ज़रूरत पड़े, कभी कोई ज़ख्म आ जाता है, हाथ में फ्रैक्चर आ गया, चोट लग गई, पट्टी बांधनी पड़ती है, तो क्या पट्टी पर मसा हो सकता है? तो पट्टी पर मसा किया जा सकता है, ख्वाह हड्डी जोड़ने के लिए लकड़ियां बांधकर की जाए या सादा पट्टी हो। दलील इब्ने माजा 657 है। नबी सल्लम के दौर में एक सहाबी जख्मी हुए थे, पट्टी बंधी हुई थी, वुजू का मसला उठा, तो आपने उसे कहा कि अपनी पट्टी के ऊपर मसा कर लो। फिर पट्टी पर मसा करने की शरायत क्या है? कि बिला मकसद ना बांधी हो, बच्चों की तरह इधर से खून निकलने वाला है, इसको पट्टी बांधो। कुछ बच्चों को बड़ा शौक होता है पट्टियां बांधने का ना, तो एक बच्चा था तो वो पट्टी लेके आ गया, पुप्पो पुप्पो इस पे पट्टी बांध दे, किधर खून निकलने वाला है, यानी है तो नहीं था तो निकलने वाला है ना। तो किस्से की बात क्या है कि पट्टी मजबूरन बांधी जाएगी, फिर पट्टी की जगह पर ही बस मसा होगा, यानी कि अब सारे ही जगह पे आप कहें जी वजू की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह पट्टी पर मसा करने और बाकी अज़ा को ऊपर तले धोया जाए। अबू दाऊद 336। पट्टी पर मसह के लिए पट्टी बांधने से पहले बावजू होना ज़रूरी नहीं। ऑफ कोर्स जब चोट लगी तो आप पता तो नहीं था चोट लगेगी, और ना ही कोई मुद्दत की शर्त है, यानी जब तक फिर डॉक्टर के मुताबिक उसके ऊपर करना होगा। तो ये चंद चीज़ें थी आपके लिए मस्से से मुतल्लिक। अब अगला टॉपिक बहुत अहम है, आप डिटेल से पढ़ भी चुके हैं और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब इसमें बहुत ज़्यादा खुद कफील हो, क्योंकि देखिए तहारत है ना, तो गुसल का टॉपिक आ रहा है आगे, और गुसल भी तहारत हासिल करने का एक मेन ज़रिया है। क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं, चलिए अब आपकी शीट्स में है, वरना मेरा तो दिल ये था कि आप इस सारे हिस्से को अगर अपनी किताबो तहारा के अंदर से मदद लेकर फिल करें तो करें। कितने लोग कहते हैं कि कर लें, उनको ज़रूरत है, हम दोहरा लें इधर, कितने लोग हैं? ब्रेक छोटी कर लेंगे, चलिए फिर वक्त नहीं ज़ाया करते। देखिए गुसल किसको कहते हैं? गुसल से मुराद सर से पाँव तक पानी का बहाना, कि कोई हिस्सा भी खुश्क ना रहे। गुसल कब वाजिब होता है? पांच मवाक़े हैं जिसके बाद गुसल फ़र्ज़ है। नंबर एक, जुनाबत, शोहर बीवी का ताल्लुक, ख्वाह इंजाल ना हो। मायदा 6, निसा 43, तिर्मिजी 108। यानी आप सिंपल सी बात इसको ले लें कि जब दोनों बगैर किसी कपड़े की आड़ के जिस्म प्राइवेट पार्ट्स मिल जाते हैं तो गुसल वाजिब होता है। इंटरकोर्स की नौबत आए या ना आए, गुसल बहरहाल वाजिब होगा। नंबर दो, एहतलाम, यानी शहवत से बगैर, शहवत से या बगैर शहवत के मनी का नींद की हालत में खारिज होना। बुखारी 282। ये वही चीज़ है जो मर्दों के बालिग होने की अलामत होती है, नाइट मेयर्स कह लीजिए इसको इंग्लिश में। नंबर तीन, हैज़ और निफास के खून के ख़त्म होने पर, कि जब पीरियड्स से फारिग हो औरत या फिर बच्चे की पैदाइश के बाद ब्लड ख़त्म हो। फिर मुसलमान को मौत के बाद, यानी मरने के मैयत का जो गुसल है ये भी वाजिब है, बुखारी 1254। और काफिर का इस्लाम कबूल करना, अल्लाह करे ऐसा मौका आता ही रहे कुफर से इस्लाम पे आए कोई तो उसका गुसल वाजिब होगा, ये बुखारी 4372। फ़राइज़ क्या हैं गुसल के? नंबर एक, नियत करना, बुखारी की पहली हदीस ही इसकी दलील है, और नियत दिल का अमल है। नंबर दो, पूरे जिस्म पर पानी बहाना जिसमें नाक और मुंह में पानी डालना शामिल है, और बालों में हिलाल करना। बात समझ गए? यानी सिर्फ आप नियत के साथ ही पूरे जिस्म से पानी गुजार लेंगे तो आपका गुसल हो जाएगा। फ़राइज़ ये हैं, एटलीस्ट ये है। सुन्नतें फिर जैसे वजू की थी इस तरह इसकी भी हैं। नंबर एक, तस्मिया, बिस्मिल्लाह पढ़ना, फिर हथेलियों को 3 बार धोने से इब्तदा करना, बुखारी 248। फिर गुसल करने से पहले प्राइवेट पार्ट को धोना, शर्मगाह को धोना और नजासत दूर करना, बुखारी 257। और गुसल से पहले वुजू करना, बुखारी 257। यानी ये सारे काम कर लें बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई रह जाए तो गुसल हो जाता है। कुछ मकरूह चीज़ें भी हैं जो कि ना की जाएँ तो, जो की जाएँ तो अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल। नंबर एक, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। आजकल कितना पानी इस्तेमाल होता है, इतने तीन तीन तो शावर लगे होते हैं सर के ऊपर, कोई इधर कोई उधर से उधर से। देखिए इसराफ नहीं करना चाहिए, जितना भी पानी है उसका हिसाब तो होगा। फिर दूसरी बात है नापाक जगह पर बैठकर गुसल करना। तीसरी बात है पर्दा किए बगैर खुली जगह पे नहाना, ये अबू दाऊद 4012 की रिवायत है, इससे भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। ठहरे हुए पानी में नहाना, कहीं पाउंड है थोड़ा सा पानी है वहाँ गए और जाकर गुसल करके आए तो ये पसंदीदा काम नहीं है, क्योंकि ठहरे हुए पानी में गंदगी की के चांसेस मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के कि जिस पर गुसल वाजिब हो वो क्या नहीं कर सकता? ये भी अहम बात है, यानी ऐसे काम जो ना कर सके, हराम हो जाएं। नंबर एक, कुरान मजीद का पढ़ना और छूना। देखिए ओनली वन सूरत है जिसमें आप कुरान पढ़ भी नहीं सकते, और वो जुनाबत की कैफियत है। पीरियड से नहीं, जुनाबत से जो गुसल वाजिब होता है उस दौरान कुरान सुन सकते हैं आप, पढ़ नहीं सकते। लिहाजा ऐसी कैफियत से एज सुन एज इंसान निकल सके तो बेहतर काम होगा, ताकि वो अल्लाह ना करे ऐसी हालत में मर जाए और मरने वाला हो तो रहमत के फरिश्ते उसके पास होंगे। फिर दूसरी चीज़, नमाज़ पढ़ना। ऐसी कैफियत में नमाज़ पढ़ने का सवाब नहीं बल्कि उल्टा गुनाह होगा। निसा 43। नंबर 3, तवाफ़ करना। बुखारी 294। फोर्थ, मस्जिद में ठहरना, गुजरना और चीज़ है। इल्ला आबिर सबील, सूरत निसा में आता है, ठहर नहीं सकते यानी आप जाकर बैठ नहीं सकते। अबू दाऊद 232। मस्जिद से बगैर रुके महज गुजरने की इजाज़त है। अब यहाँ कुछ सिस्टर्स का क्वेश्चन होना चाहिए, होता भी है कि लेक्चर सुनने किसी मस्जिद में गई तो वो नापाकी की कैफियत में थी, पीरियड्स में थी, तो क्या करें? तो उसके लिए ये कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो मस्जिदों में इतनी बड़ी जगह होती है, सारी मस्जिद में स्पीकर्स लगे हैं, तो आप कॉमन एरियाज़ में बैठ जाइए, लॉबीज़ में बैठ जाइए, बच्चों के रूम में बैठ जाइए, किचन में बैठें, या वो जगह जहाँ 5 वक्त नमाज नहीं होती लेकिन मल्टीपर्पज़ टाइप का कोई हॉल है तो वहाँ बैठ कर आप सुन सकते हैं। फिर जिस पर गुसल वाजिब हो इसके लिए कौन से काम मकरूह हैं? नंबर 1, हालत जुनाबत में बगैर वजू के सोना, तिरमिज़ी 120। याद रखिए गुनाह नहीं है लेकिन पसंदीदा भी नहीं है। फिर गुसल में फजूल खर्ची से काम लेना, बुखारी 201। ऐसे वक्त में भी इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को बचा के रखे। अब इसके बाद आप देखिए गुसल का तरीका, हर चीज़ का तरीका है तो इसका भी तो तरीका होगा ना। तो गुसल के तरीके में क्या चीज़ है, पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नंबर 1, नियत करना, और नियत दिल का अमल है। बिस्मिल्लाह पढ़ना, दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना, अगर बर्तन से पानी लेना है तो पानी लेने से पहले हाथों को धोना। फिर नेक्स्ट क्या है, इस्तंजा करना और शर्मगाह से लगी हुई नजासत को धोना और मिट्टी से या साबुन से हाथ मारकर साफ़ करना। फिर मुकम्मल वुजू करना, पाँव धोने के अलावा। पाँव धोने ज़रूरी नहीं होते, जब आप गुस्ले जुनाबत में वुजू कर रहे हैं तो पाँव मत धोइए, पाँव साइड में जाकर बाद में धोए जा सकते हैं, और एंड पे जो भी पानी गुजरेगा वो भी उस पे काफ़ी होगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि मुकम्मल मुकम्मल वुजू करना पाँव धोने के अलावा, सर को कानों तक समेत 3 बार धोना, यानी सर के ऊपर 3 चुल्लू डालकर जैसे वो तेल लगाया जाता है जड़ों तक पानी गुजार लें तो भी ठीक है, लेकिन पूरे सर पे भी पानी चला जाए तो भी ठीक है। पहले दाएं हाथ हिस्से पर पानी बहाना। अब आप शावर में ऐसे कैसे करें, ज़रा सा साइड, पहले राइट साइड आगे ले आइए फिर लेफ्ट साइड ले आइएगा, फिर बाएं हिस्से पर पानी बहाना और पूरे पूरे बदन को धोना, और दोनों हाथों से बदन को रगड़ना, और आखिर में दोनों पाँव धोना। अब मसनून गुसल कौन से हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। कब गुसल करना सुन्नत से साबित है? नंबर 1, नमाज जुमा के लिए। बुखारी 877। जुमे के दिन पूरी कोशिश किया करें कि गुसल करें। फिर ईदैन के लिए, दोनों ईदों के मौके पे नमाज पे जाने से पहले गुसल, यानी इसके लिए गुसल किया जाएगा। इसकी रिवायत मौता इमाम मालिक में 77 जिल्द नंबर 1 है। इसी तरह जादुल माद में भी 442 है। अच्छा, कुछ किताबों के नाम आपके लिए नए होंगे। कल एक सवाल था मेरे पास कि क्या ये सही तरगीब है, और ये सब कुछ क्या हदीस की किताबें हैं? देखिए ये सब हदीस की किताबें हैं, एटलीस्ट या सित्ता। ये आप उलूमुल हदीस आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट कोर्स में तो आपको अंदाज़ा होगा। तो जब किसी भी किताब के साथ सही लग जाता है तो वो सही है। 6 किताबें दे आर द मोस्ट ऑथेंटिक, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि इसके अलावा बाकी नहीं है। जैसे मौता इमाम मालिक इज़ द वेरी ऑथेंटिक बुक। मुस्तदरिक हाकिम, आपको पता है वो क्या है? इमाम बुखारी ने जो हदीसें जमा की थी उनमें सारी सही हदीसें थी, लेकिन किसी एक वजह से उस क्राइटेरियन पे फिट नहीं आ रही थी कि उसको बुखारी में लिखते, वो उनको छोड़ते गए, उन सब को जमा करके तो मुस्तदरिक हाकिम बन गई। तो अब वो उसमें एक भी हदीस गलत नहीं होगी, लेकिन जैसे एक कंपनी है उसका एक स्टैंडर्ड है, मिसाल है कपड़ा बनाने वाली कंपनी, अब ज़रा सी स्टैम्प टेढ़ी हो गई तो वो कहेंगे कि नहीं हमारे स्टैंडर्ड में ये टेढ़ी स्टैम्प वाला नहीं जाएगा, तो वो उसको रिजेक्शन में करके आउटलेट्स में डाल देगा। तो ये पूरा इल्म है, तो इसलिए कभी ये मत सोचिए कि बुखारी मुस्लिम के अलावा कोई और हदीस है तो वो ठीक नहीं होगी। कई जगह जैसे अभी इसमें जादुल मात का नाम दिया है, ये बुक है, इतनी खूबसूरत किताब है, पढ़ने के काबिल है, तो लिहाजा ऐसे रेफरेंसेस को भी फिर हम समझेंगे। फिर इसके बाद तीसरी चीज़, मैयत को गुस्ल देने के बाद, फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है। वैसे भी डिप्रेशन आता है, इतनी करीब से एक बंदे को मौत की हालत मुर्दा देखना कि जो कुछ अरसे पहले आपके साथ बिल्कुल चलता फिरता है, तो वो एक दफ़ा से वो एक रिलीफ के लिए भी गुस्ल देना, उस वक्त गुस्ल कर लेना चाहिए। फिर फोर्थ थिंग है अहराम बांधने के लिए, तिर्मिज़ी 8:30। फिर मक्का में दाखिल होने के लिए मुस्लिम 1259, यानी जब भी इरादतन मक्का में दाखिल हों तो कोशिश करें कि उससे पहले गुसल किया हो। फिर जिस पर गशी तारी हो, बुखारी 687 है, बेहोश है, अब वो क्या करे, गुसल कर ले। इस तहाजे वाली औरत को नमाजों के लिए गुसल करना चाहिए, अबू दाऊद 294। ये गुसल वाजिब नहीं, मुस्तहब है। यानी इस तहाजा, यानी वो औरत जो कभी भी क्लीन नहीं फील करती अपने आप को, पाक नहीं, पीरियड्स के अलावा भी ब्लड आता रहे, तो उसके लिए बहुत रिकमेंडेड क्या है, हर नमाज से पहले गुसल कर ले, लेकिन ना कर सके तो गुनाह नहीं है। ठीक है, इसी तरह देखिए, जब गुसल ना कर पाए बीमारी की वजह से या पानी के ना होने की वजह से, तो उसको तयम्मुम कहते हैं। तयम्मुम की चंद बातें देखिएगा। मखसूस तरीके से पाक मट्टी के साथ चेहरे और दोनों हाथों का तयम्मुम करना, मसा करना तयम्मुम है। इसका रूट क्या होगा, ज़रा सा सोचे। या मीम, यम, यम कहते हैं इरादा करने को, तो तयम्मुम इरादा करना, यानी बस इरादे से वुजू हो गया, पानी नहीं डालना पड़ा। इसका हुक्म क्या है, अल्लाह ताला सूरत निसा 43 में क्या फरमाते हैं, अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो और तुम में से कोई जायज़ ज़रूरत से फारिग होकर आए या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो फिर तुम्हें पानी ना मिले, तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो, फिर अपने चेहरों और हाथों पर मसह कर लो, यकीनन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। सवाल पैदा होता है कि तयम्मुम की कोई शरायत है, यानी हम सारे ही तयम्मुम कर लें तो कोई शरायत है, बिल्कुल है। नंबर एक, पानी ना मिले और इसका हासिल करना दुश्वार हो। फिर पानी मौजूद है मगर बीमारी की वजह से पानी इस्तेमाल करने पे कादिर नहीं है। थर्ड थिंग, पानी है पर इतना थोड़ा है कि पीने के लिए काफ़ी है। अब आप अगर वुजू कर लेंगे या गुसल ही उससे कर लेंगे तो फिर पीने के वक्त पे तो नहीं मिलेगा आपको, तो उससे भी फिर इंसान को परेशानी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग क्या है, दूसरी शर्त, यानी पहली शर्त पानी के मुतालिक थी, चार चीज़ें आपको बता दी। सेकंड थिंग है मट्टी से मुतालिक। नंबर एक, मट्टी पाक और मुबाह हो, इस पर गुबार हो और मिली जुली ना हो, यानी मट्टी में कोई भी चीज़ आ सकती है। बस लोग मट्टी का ढेला रख लेते हैं पास, या कुछ मट्टी कहीं भी फर्नीचर पे ऐसे हाथ लगा ले, दीवारों पे, बस हल्की सी झाड़, और इस तरह एक दफ़ा और एक दफ़ा हाथों पे, दैट्स इट। यानी असल में ये एक स्पिरिचुअली अल्लाह ताला फील करा देते हैं कि आपने कुछ किया है, अदरवाइज वुजू और तयम्मुम में बस यही फ़र्क है। फिर इसके बाद आप देखिए कि तयम्मुम के भी अरकान वही हैं जो वुजू और गुसल के थे। नंबर एक, नियत करना, एक बार दोनों हाथों को मट्टी पे मारना, पूरे चेहरे का मसह करना, इसके बाद कलाइयों तक दोनों हाथों का मसह करना। तयम्मुम की सुन्नतें क्या हैं, नंबर एक, गुसल के लिए तयम्मुम की सूरत में तरतीब और बग़ैर वक्फे के अमल को कायम रखना, आखिरी वक्त तक मौखर करना और वुज़ू के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ पढ़ना, यानी आखिरी हद तक कोशिश कर लेनी चाहिए पानी मिलने की, नहीं मिला तो तयम्मुम करें, ये मुराद है इसमें। बस फ़र्क ये है, बाकी वही थी जो आगे भी पढ़ी हैं। तयम्मुम किस चीज़ से टूटता है, बहुत अहम सवाल है। एक जुमला बोल दूं, हर वो चीज़ जिससे वुजू टूट जाता है उससे तयम्मुम भी टूट जाता है, सिवाय एक दूसरी चीज़ के, और वो क्या है, अगर पानी ना मिलने की वजह से तयम्मुम किया, पानी मिल गया तो तयम्मुम टूट जाएगा। और तीसरी क्या, दूसरी क्या वजह थी तयम्मुम करने की, बीमारी, तो बीमारी दूर हो गई तो अब भी टूट गया। तो तीन चीज़ें हैं बेसिकली तयम्मुम को बातिल करने की। नंबर एक, हर वो चीज़ जो वुजू को तोड़ दे, पीछे पड़ी है ना 8-7-8 चीज़ें। नंबर दो, पानी ना मिलने के लिए तयम्मुम किया, पानी मिल गया। और तीसरी, बीमारी की वजह से तयम्मुम किया था, बीमारी अल्लाह के हुक्म से दूर हो गई। कोई मकरूह चीज़ भी है तयम्मुम में, बिल्कुल है, और वो क्या, बार बार ज़मीन पर हाथ मारना, ये भी चीज़ मुबालगे की हद तक है। कई लोग कहते हैं हमारी तसल्ली नहीं हुई और इस तरह की बात है, तो बहरहाल ये चंद बातें तयम्मुम की थी। अब चंद बातें ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए पीरियड से मुतल्लिक, हैज़ और इस्तहाज़ा। कुरान में यसअलूनक अनिल महीस से आयत शुरू होकर उसमें ये बात की। और आप देखिए कि एक बहुत पर्सनल मैटर को अल्लाह ने अपनी किताब में लाकर ये पेश कर दिया कि कुरान हर मसले का हल है। दूसरी बात यह है कि कुरान और सुन्नत की गाइडलाइन के बग़ैर जब ये काम किए जाएंगे तो यकीनन हम उसमें गलती खाएंगे। तो हैज़ क्या है? बलूगत के बाद महसूस दिनों में औरत को जो ब्लड आता है उसको हैज़ कहते हैं, और ये ख़ास रग से आता है। हर खून हैज़ नहीं होता। ऐसा खून जो औरत के रहम से, विलादत या बीमारियों से सलामती की हालत में बलूगत के बाद निकले, यानी बस आसानी के लिए आप समझ जाएं कि एक आदत है ख़वात औरतों की, अल्लाह ने औरत या लड़की के बाले होने की इसको निशानी बनाया। इस्तखाज़ा किसको कहते हैं? वो जो रहम के निचले हिस्से की रग से किसी बीमारी की वजह से आता है। यानी हर खून हैज़ का नहीं होता, दो खून होते हैं, एक हैज़ का और एक इस्तहाज़े का। फ़र्क क्या है दोनों में? नंबर एक, ये बहुत अहम है, बाज़ लोग सवाल करते हैं क्लैरिटी नहीं, क्या करें, नमाज़ पढ़ें कि ना पढ़ें, तो हैज़ और इस्तहाज़े के ब्लड के डिफरेंस लिख लीजिए। नंबर एक, हैज़ का खून गाढ़ा होता है जबकि इस्तहाज़ा का खून पतला होता है। हैज़ का खून स्याह रंग का, सुर्ख, जर्द और खाकी, यानी सफ़ेद और स्याह के दरमियान होता है, और इस्तहाज़ा का ज़ख़म प्योर रेड, ज़ख़म से बहने वाले खून की तरह पतला होता है। फ़र्क समझ आए? पहला फ़र्क क्या था? थिकनेस का, वो थिक है, वो थिन है। दूसरा रंग का फ़र्क था, ये काला है। बस लोग कहते नहीं, मुझे तो बिल्कुल खिला हुआ खून आ रहा है। खिला हुआ खून ही तो इस बात की अलामत है कि वो पीरियड्स नहीं। और आप में से जिन्होंने मेडिसिन पढ़ी है आपको अच्छी तरह पता है कि पीरियड का ब्लड सारा महीना जिस्म में जो डिटेरियोरेशंस होती हैं, मेटाबॉलिज्म चलता है, जो सेल टूटते हैं, असल में ये कह लीजिए कि पीरियड जो है ये हमारे टूटे हुए सेलों की लाशें होती हैं। बात सही कही मैंने? जैसे पस है, वाइट सेल्स टूटते हैं तो पस बनती है, ये रेड सेल्स के टूटने से ब्लड बनता है। औरत के जिस्म में जो नज़ाकत और सहूलत और नरमी है वो इसी वजह से कि उसके जिस्म से गंदगी निकल जाती है। तो मर्दों का क्या हाल है? वही उनके जिस्म में मिलती है तो वो सख्त जान बन जाते हैं और आपके भारी भारी बैग उठा उठा के फिरते हैं बेचारे, और कुर्सियाँ, मेज़, टेबल हटाते हैं। देखिए फितरत का निज़ाम तो देखिए, अल्लाह ने एक नरम चीज़ के साथ एक सख्त चीज़ को रखा है, औरत को डेलिकेट कर दिया। अगर अगर औरतों को ये ना होते तो औरतें भी मर्दों की तरह सख्त होती। तो ये चीज़ों से भी आप अल्लाह को पहचानिए कि अल्लाह ने अपने बंदे की हर ज़रूरत का ख्याल रखा है। तीसरा फ़र्क क्या? हैज़ का खून बदबूदार होता है जबकि साजा के खून की वो आम खून जैसी होती है, यानी कच्ची कच्ची स्मेल हो सकती है लेकिन बहुत उसमें बैड स्मेल नहीं होती। ठीक है, फिर इसमें आप देखिए कि हैज़ के आने की कम से कम मुद्दत क्या है? कब हम कह सकते हैं कि वाकई अब ये पीरियड्स एक बच्ची को आने शुरू हो गए हैं? तो इसके लिए याद रखिए कम से कम उम्र तकरीबन 8-9 साल होती है, लेकिन इससे कम उम्र में अगर किसी बच्ची को शुरू हो तो वो इस्तहाज़ा होगा, डॉक्टर्स को दिखाया जा सकता है। लेकिन आज तो सब कुछ ही बदल गया, क़यामत के करीब तो 8-9 साल की बच्ची के नानी दादी बनने की भी कहानी है। अल्लाह जाने वो वक्त क्या गुल खिलाएगा, यानी आज आप इनको देखिए। लेकिन जितना बाहर से माहौल इंड्यूसिव और इमोशनल, सेक्सुअल और गंदगी का होगा उतनी जल्दी बच्चियां पर बालिग होंगी। दूसरी बात है खुराक जितनी इंडस्ट होगी, हर चीज़ में विटामिन डाले हुए और इसमें ये इंड्यूस्ड दिस वन, ये चीज़ों से भी आएगा। तो ये बाहर में बहुत ज़्यादा इस किस्म की फहाशी और बुरयानी का होना और टू रिच फूड का होना, ये दो बुनियादी वजूहत आज के दौर में 90% प्रॉब्लम्स में ही हैं बच्चियाँ। किसी को जल्दी हो रहे, किसी को हो नहीं रहे, वट एवर। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या है? कब तक ना आए तो परेशान हो जाएं, कोई उम्र नहीं है। कई बच्चियों को 20 साल में भी आ सकते हैं, ये एक नेचुरल साइकिल होता है जब भी कोई हो जाए। कम से कम मुद्दत कितनी, ये बहुत अहम सवाल है। बाज़ लोग पाक हो जाते हैं, यानी बाज़ सिस्टर्स हैं वो पाक हैं लेकिन कहती नहीं अभी दिन नहीं पूरे हुए। तो नोट कीजिए, हैरान होंगे आप सुन के, कि या में हैज़ की कम अज़ कम मुद्दत एक रात और एक दिन है, 24 आवर्स में भी ख़त्म हो जाता है। यानी इस आप ये मत सोचिए कि 6 डेज पूरे करने या वो है, इससे कम वक्त के लिए अगर आए, बस कहीं थोड़ा सा एक ड्रॉपिंग हो गई तो वो इस्तखाज़ा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत कितनी है, इस पे फिर वही क्वेश्चंस हैं। देखिए जो आदत शुरू से होती है ना वही आदत है। अगर पीरियड्स के शुरू के दिनों में 6 डेज थे, 7 थे, 8 थे, 10 थे, 15 तक भी लोग गए हैं, लेकिन मेरी नज़र में इसकी कोई एक हद बंदी आप नहीं कर सकते। जो आपके पीरियड्स शुरू में, जब आपको ये आदत शुरू हुई उसमें जो थी उसी को काउंट किया जाएगा। उसका ना हो तो उसकी खाला को देखा जाएगा, माँ को देखा जाएगा, बहन को, उन दिनों को हैज़, और उसे एक्स्ट्रा ब्लीडिंग को फिर इस्तेखाज़ा समझा जाएगा। फिर इसी तरह दो हैज़ के बीच में तहारत की हालत के क़ुरू कहते हैं जिसको, कहाँ पढ़ा है कुरान में हमने, सलासता खुरू, शाबाश, इद्दत के मसाइल में सलासा खुरू। खुरू बाज़ कहते हैं दो प्योरिटीज़, यानी एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच का प्योर टाइम, और बाज़ कहते हैं पीरियड के शुरू होने, यानी पहले दिन से लेके अगले पीरियड्स के शुरू होने तक का दिन है। ये कितनी होती है? तो आप देखिए कि इसमें फिर वही कहूँगी कि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं बरतनी चाहिए। 13 दिन के बाद भी दोबारा शुरू हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन अमूमन मेडिकली ये साइकिल 28 डेज़ का होता है। बहरहाल फिर इसी तरह से आप देखिए कि आम औरतों में अमूमन 6 से 7 दिन होता है, और तोहर बीच में जो साफ दिन रहते हैं वो अमूमन 23 से 24 डेज़ होते हैं। ये अबू दाऊद की रिवायत 2287 से भी आपको मिल जाएगी बात इंशाल्लाह ताला। कैसे पता चले एक औरत को कि मैं पाक हो गई हूँ? हाइजा औरत को कैसे पता चले कि वो पाक हो गई है? तो नंबर एक, हाइजा की मुद्दत ख़त्म होने का अंदाज़ा ब्लड का गदले, यानी जैसे लाइक पेल कलर में चेंज होना और फिर सूखते सूखते बिल्कुल खुश्क हो जाना। अबू दाऊद 307 और बुखारी 326 है। इसी तरह हाइज़ औरत सफ़ेद मदा देखेगी कि ट्रांसपेरेंसी आ जाए। देखिए इसको आसान लफ्ज़ों में समझ लें, मटियालापन भी ख़त्म होकर चाहे एक लम्हे के लिए आए, ट्रांसपेरेंसी। आप नैपकिन यूज़ करके देख सकते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट हो गई औरत एक दफ़ा तो पीरियड्स ख़त्म हो गए। उसके बाद अगर दोबारा ब्लड आ जाए तो वो इस्तहाज़ा होता है, उसको इग्नोर करके नमाज़ पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरह से यानी डिफरेंट कलर है कि उसको ब्लड को रेड भी आ सकता है, येलो भी है, ये हर एक औरत का एक अपना हिसाब हो सकता है। फिर इसी तरह से लिखोरिया जिसको अक्सर लोग बोलते हैं, उसके लिए भी ऐसे ही अहकाम हैं, वज़ू कर लेना चाहिए, गुसल की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बात छोटी सी है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को बेइल्मी की वजह से नमाज़ें छोड़ने का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। आज हमारे कल्चर में ये बहुत ही मुश्किल बात हो गई कि ख़वातीन, जैसे सफ़ेद पानी आ रहा है तो वो भी पाक होता है, इससे वज़ू टूट जाता है, जैसे लिकोरिया से वज़ू टूट जाता है, लेकिन ये नापाक नहीं होता। बस अगर किसी के कपड़े पे ऐसा कोई पानी लग गया तो उसमें आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह गदले या पीले रंग के पानी, इसके निकलने का क्या हुक्म है? तो हैज़ से पहले अगर ऐसा पानी आना शुरू हो जाए तो ये निशानी है पीरियड्स की, और अगर इससे मुतल्लिक नहीं तो इसको इग्नोर किया जाए। फिर इसी तरह पाकी के दिनों में औरत के जिस्म से कोई ऐसी रतूबत निकल आती है, कोई ट्रांसपेरेंट, कोई यानी सिक्रीशन टाइप है, रंग नहीं बदला, तो ये चीज़ें वुजू तोड़ देंगी, लेकिन इससे फिर गुसल वाजिब नहीं होता। और बहरहाल ये सारी चीज़ों से बचना है, और इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल हो, और अगर कोई किसी चीज़ में डॉक्टर से भी मदद लेने की ज़रूरत पड़े तो इंसान एक किसी अब फीमेल डॉक्टर से भी फ़ायदा उठा सकती है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अगर किसी औरत की एक मुद्दत थी लेकिन पहले ही पाक हो गई, गुसल करके नमाज़ शुरू कर दे, दैट्स इट। कभी 1 महीने में 6 दिन में पूरी हुई, किसी में 7 में हुई, बस जब आप पाक हो गए, और दो अलामतें ही होती हैं, ट्रांसपेरेंसी भी होती है और उसके साथ ये कि वो एक मखसूस स्मेल ख़त्म हो जाती है, एक कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसको नमाज शुरू कर देनी चाहिए। फिर इसी तरह से अगर आगे पीछे हों, कुछ को कभी हो ही ना, तो बास तक यहाँ तक भी कहा गया कि फिर हर माह उन्हीं तारीखों में, यानी ऐसे कुछ लोगों को मैं खुद भी जानती हूँ कि सारा महीना ही वो बेचारे परेशान रहते हैं, तो फिर वही तारीखें जो शुरू में चल रही थी उसमें नमाज छोड़ दे, बाकी दिनों में नमाज को पढ़ती रहे। फिर इसी तरह से इस तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं, अगर कोई रह गया इसमें तो आप किताबो तहारा में से जाकर इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए निफास है, बच्चे की पैदाइश के बाद जो ब्लड आता है उसको निफास कहते हैं। अगर किसी को ना आए तो क्या होगा? ख़त्म, निफास है ही नहीं, वुज़ू करे और नमाज़ पढ़े। यहाँ बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है हमारे कल्चर में, बच्चे की पैदाइश के बाद 40 डेज़ तक नमाज़ पढ़नी ही नहीं है, और हर किस्म के शरई रुख्सत वाले काम से भी बास रहना ये दुरुस्त नहीं है। बास लोगों को फौरन आता है, फिर बीच में बिल्कुल पीरियड्स की तरह एक पूरा महीना वो खुश्क रहते हैं, अगले महीने फिर दोबारा शुरू होता है। खुश्की के दिनों में गुसल करके नमाजें अदा करेगी, और अगर नमाज है तो फिर जो और पाबंदियां हैज की सूरत में शौहर बीवी के वो भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन यह है कि सिर्फ इस नाम पे कि आप 40 डेज पूरे नहीं हुए, नहीं, फ़र्क फिर मसला क्या है 40 डेज का? दिस इज़ द लिमिट। एक औरत को बच्चे की पैदाइश के बाद 40 डेज तक ब्लड आता ही रहा, 41th डे पे भी आ रहा है, तो 41th डे को वो गुसल करके नमाज पढ़ेगी, ये मुराद है, बात समझ गए? यानी 40 डे इज़ द लिमिट, ये ज़रूरी नहीं कैसा हो, कुछ को 40 डेज तक आता है, कुछ को नहीं आता। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें इल्म लेना चाहिए, इसकी वजह से नमाजें जाती हैं, हराम और हलाल होने लगता है, इस चीज़ को देखना चाहिए। फिर इसी तरह से ऐसी जो नमाजें, इसका भी एक हुक्म है कि जब पाक हो तो पिछली नमाज को साथ मिला लेना चाहिए, एहतियात की वजह से। ये आप जनरल दो चार बातें इसकी बता के इसको वाइंड अप करती हूँ कि आपने गुसल किया और उससे पहले जोहर की नमाज गुजर गई थी, असर के वक्त फारिग हुए तो जोहर के भी 4 फर्ज पढ़ लीजिए। इसी तरह आपने ईशा की नमाज के वक्त गुसल किया तो मगरिब के भी पढ़ लीजिए। क्यों पढ़ लीजिए? इसलिए कि आपको पढ़ देखने में टाइम गलती लग सकती है, कुछ ना कुछ आपकी वजह से गलत हो सकता है। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये टॉपिक्स, ये इसमें कुछ सवाल छुटे होंगे, इसको छोड़ देते हैं, आप खोल कर किताबो तहारा को उसमें से ये दोनों टॉपिक्स पढ़िए और इसकी डिटेल्स लिख सकते हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि अल्लाह ने हर बात को खोल खोल कर क्यों बयान किया। कुरान क्या है? बुक ऑफ लाइफ है, ये डे टू डे आपका मेरा प्लानर है। अगर आप मैं अगर दुनिया में आप देखिए कि मेजॉरिटी खवातीन की है, खवातीन का एक इतना अहम इशू अगर इतना खोल के ना बयान किया, और ये सारी बातें कहाँ से बता रहे हैं? हदीस से, कुरान में बस एक आयत है, या सलुन्ना का निल महीस, या फिर इद्दत और तलाक के ज़िम्मन में कुछ बातें आती हैं। तो क्या पता चलता है कि इन चीज़ों का इल्म लेना चाहिए, एक औरत के लिए इन चीज़ों का इल्म लेना फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पे जो कि इनके फियाज से गुजरे, क्योंकि नमाजों को इधर उधर करना और बाकी चीज़ों को पीछे करना, ये ख़ुद को मसले में डालना है, ठीक है? फिर इसके बाद गुसल, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है 19-20 का। ये सब कुछ आपको अल्हम्दुलिल्लाह किताबो तहारा में पढ़ाया गया है, इसके असाइनमेंट में आपने इंशाल्लाह उस बुक की हेल्प लेनी है, ताकि अगर कोई कमी बेशी हो गई तो दूर हो जाए। एक लिटरल बात जो शायद इस वक्त आपको मुश्किल लगे समझने के, फ़र्क है कोई के पीरियड्स के गुसल और जनाबत के गुसल में फ़र्क है? आम हालात में तो वही पाबंदियाँ हैं कि नियत करके वुज़ू कीजिए और सर पे, पूरे जिस्म पे, सर के बालों समेत पानी डाल दीजिए। लेकिन जनाबत के गुसल में एक रुख्सत है जो हमारे कल्चर में बहुत कम लोगों को पता है। पूरे बालों को धोने की बजाय सिर्फ सर की जड़ों को गीला कर लिया जाए, क्योंकि देखिए ये कैफियत किसी वक्त भी आ सकती है, हंगामी नौयत है। पीरियड्स का ब्लड महीन पीरियड का गुसल महीने में एक बार होता है, दैट्स इट। तो उसमें तो इंसान पूरे शऊर से गुसल ले सकता है, लेकिन दूसरी कैफियत में बाज़ हालात ऐसे होते हैं, इंसान साथ दूसरों के साथ है, सफ़र में है, तो सिर्फ सर की बालों की जड़ों को धो लेना भी काफ़ी होता है। इस तरह कुछ कल्चर हैं, औरतें चुटिया करती हैं, छोटी छोटी मीढ़ियाँ की जाती हैं, आपने कुछ कल्चर में देखा होगा, अरब लोग भी करते थे, आज पठान और अफगानी लोगों को देखें, 100-100 चुटियाँ, अब वो हर चुटिया नहीं खोल सकते, तो बस उसके अंदर जड़ों में से पानी गुजार लेना जो है ये काफ़ी होता है। फिर एक आखिरी चीज़ जो सबको ही कुरान के अंदर पता है कि क्या शौहर बीवी का ताल्लुक इन कैफियात में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता और किस में हो सकता है? हैज़ की हालत में नहीं हो सकता, निफास में 40 डेज के अंदर अंदर, उन दिनों में जब ब्लड आ रहा हो नहीं हो सकता, और इस्तहाज़ा में हो सकता है, दैट्स इट। इतना ही काफ़ी है इसके लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दीन को सही मानों में समझने वाला बना दे। पढ़ते पढ़ाते वाकई महसूस हो रहा है कि हमारा रब हमसे बहुत प्यार करता है। अब कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। यहाँ पे हमारा अब अल्हम्दुलिल्लाह तहारत का टॉपिक पूरा होता है, छोटी सी ब्रेक लेकर हम नमाज को शुरू करेंगे, और आप नमाज जिसके साथ हमारा एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, इंशाल्लाह उसकी वो चीज़ें समझेंगे जो शायद अभी आपने ना समझी हो। एनी क्वेश्चन, एनी थिंग? जी आप। इसको इग्नोर कर दीजिए, जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई और आपके सीट में ये एडिट हो जाएंगी, ठीक है? डोंट, इसकी वजह से आप बॉदर ना हो। जी आप इधर से। पाँव सीधे, हाथ पहले सीधा पाँव फिर उल्टा पाँव, हाथ कौन सा लगाना है? अब जो आपके लिए इजी हो वो लगा ले। हाथ लगाने की शर्त नहीं, बस पाँव पूरा, आप बाल्टी में पानी डाल लें पाँव और निकाल लें। जी आप जी, अच्छा सवाल है। आई आई अंडरस्टैंड, इनका सवाल बहुत अच्छा है कि कभी जुनाबत की हालत में आदतन कोई बात से निकलती है तो हम पढ़ते भी हैं कि रब्बना ला तो आखिज़ नहीं नसीना, भूल चूक माफ़ है, इंशाल्लाह ऐसे कुछ नहीं होगा। ठीक है जी आप जी। ये बड़ा ख़तरनाक मोज़ा है, इसके अंदर जी यही मैं दिखा रही थी, इधर आके दिखाएं आप सबको। देखिए इसमें कभी इनका घुटना ढक, वो क्या कहते हैं, टखना, कभी टखना यानी एंकल ढकता होगा, कभी उठता है। इसके ऊपर मसा नहीं करिएगा आप, इसके नीचे एक पतली लंबी पहन ले। अभी आजकल हम पहनने लग गए हैं, पहले ऐसी नहीं पहनते थे। ठीक है, तो अगर ऐसी सॉक पहनी है तो नीचे एक फुल भी पहन लीजिए, फिर मसा कीजिए। यहाँ तक नहीं, बस टखने पूरे कवर्ड हों, टखने। ठीक है, फिर कर सकते हैं जी आप। एक सॉरी, मेरे दो ही कान है जी, यही बताया, कोई भी हाथ ना लगाएं तो भी ठीक है। डिप कर सकते हैं आप बाल्टी में, टब में पाँव डालें, उसमें डिप करें, हाथ लगाना आपकी मर्जी है, जो मर्जी लगा लें। अल्लाह करे हम बाकी मामलों में भी इतने फिकी हो जाएं, इंशाल्लाह। पैरों की उंगलियों का ये चीज़, ऐसे उंगली आप डाल डाल के करते थे, पैरों की उंगलियों में भी खिलाल होगा। जी आप साथी, जी देखे, अगर सुनिए ये मैं अपने लफ्ज़ों में बता दूं, आपने वुज़ू किया, पूरे पाँव धो लिए हुए थे ना, जब तक वो वुज़ू नहीं टूटा, एनी टाइम, फौरी, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आप मोज़े पहन लें। ठीक है, अब उन मोज़ों पे आप 5 नमाज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, सफ़र की हालत में 3 दिन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते नहीं मोज़े उतार के दोबारा वुज़ू करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये चीज़ अगर आपको रोक दे नमाज़ पढ़ने से, और ये मुबालगा है, और अगर आप इसमें शक करें नहीं इससे मेरा दिल नहीं मानता, तो ये भी गलत है। आपकी खुशी है, आप धोना चाहें, आपकी मर्जी है, मना भी कोई नहीं करता, लेकिन ये सोचना कि मसा करके पढ़ी भी नमाज हल्के दर्जे की होगी पाँव धोने से, तो ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह को जिस तरह अपनी पाबंदियों को कबूल कराना पसंद है, इस तरह रुख्सतों को कबूल कराना भी पसंद है। ठीक है जी आप। जूतों से नहीं जी, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए वो चीज़ जो उतारें तो फिर टूट जाएगा ना, सॉक्स पहनने में, अब वजू जूता हर वक्त तो नहीं पहनते, हर जूते पहनकर नमाज़ पढ़ सकते हैं हम, ये भी एक सवाल है, अभी नमाज के मौजूद में हो सकता है ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मसा जूतों पे नहीं हो सकता। और ठीक है चले, ब्रेक के 3 मिनट गुजर चुके हैं आपके, आपको पता भी नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपसे कंपीट, आपसे कंपीट करती हैं ये
जी। कैसी, एंड शाहीन फॉरगॉट टू टेल मी कि आपको चाय चाहिए, तो मैं अभी
This for your left foot using your left hand. We finish wudu by saying,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
الحمد لله. थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ आपको, विजुअलाइज़ कर सीधे हाथ से, तो नमाज का तरीका, वुज़ू का तरीका जो है, ये हमेशा उस वक़्त मिल समझ आता है आपको, जब جب آپ دیکھ لیتے ہیں. اور ہم سب کو اپنی غلطیوں کو ضرور دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں. اور اب انشاءاللہ ہم تھوڑا سا نماز کا ٹاپک کنٹینیو کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ نماز کس طریقے سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ اسلام اے ٹو زی میں عبادات کا ٹاپک چل رہا ہے اور عبادات کی روح یا کہہ لیجئے کہ وہ عبادت جو دن میں کم از کم 5 دفعہ ایک ایمان والے پر فرض ہے اس کو نماز کہتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے. حقیقت ہے کہ یہ لفظ کہنا کہ نماز کیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی. بچپن سے آج تک جو لفظ شاید دین کے نام پر ہم نے سب سے زیادہ سنا وہ نماز ہے. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ نماز سے پہلے اگر ہم نے کلمہ یا توحید کی گواہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی, اس کو بھی اتنا ہی توجہ دی ہوتی تو آج ہمارے ارد گرد اتنا شرک نہ ہوتا. بات کو کیسے واضح کروں گی کہ بہت سارے لوگ جو نماز نہیں چھوڑتے لیکن توحید اور سنت دونوں پہ عمل نہیں ہے. بات سمجھ؟ یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ کے وہ مقام اور وہ چیزیں کہ جس کو واقعی دین میں ایک بنیاد کی حیثیت تھی, اس سے بھی زیادہ لوگ نماز کی بات کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس نماز کی روح کو سمجھیں. نماز کیا ہے؟ احادیث کی روشنی میں چند تعریفیں. نمبر ایک, نماز نور ہے. صحیح مسلم 534. نماز سے درجات بلند ہوتے ہیں. مسلم 1093, ترمذی 388. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. نسائی 3391 اور 3392. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. نسائی 468. اور نمازی کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. بخاری 659. اور نماز گناہوں کی, یعنی آپ کہیں کہ نمازی کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور اسی طرح سے گناہوں کی آگ نماز کے ذریعے بجھتی ہے. صحیح ترغیب 358 اور 288. اور نماز کی پابندی کرنے والا شہداء کے ساتھ ہوگا. صحیح ترغیب 361. تو یہ تو تھی چند احادیث جو نماز کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں. سوال پیدا آتا ہے ہوتے ہیں کہ نماز ہے کیا, اس کا روحانی پہلو کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ دہر کی پہلی آیت میں کہتے ہیں حل علی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا اس انسان پر زمانے کا وہ وقت نہیں گزرا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا, ایک مقصد دیا. انسان کو نماز کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ خالق ہے اور انسان اس کی مخلوق ہے. رازق اللہ ہے, بندہ مرزوق ہے. مالک اللہ ہے اور مملوک بندہ ہے. اور خالق اور مخلوق, رازق اور مرزوق, مالک اور مملوک کے بیچ میں کیا رشتہ ہونا چاہیے, نماز اس کا عملی اظہار ہے. کہاں ایک مٹی کا ذرہ زمین میں چلتا پھرتا اور ایک اتنی بڑی ہستی کے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے, پھر اپنی پیشانی کو جھکا دے, پھر سجدے میں گر جائے. اصل میں نماز بندگی کا سبق دیتی ہے. واقعی الصلاۃ علی ذکری سورۃ طہٰ 14 میں آتا ہے, اور تم میری یاد کے لیے نماز ادا کرو. اور مسند احمد میں آتا ہے کہ نمازی اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے جس نے اپنے اور ہمارے درمیان روحانی رابطہ مقرر کیا. کہہ لیجئے کہ نماز روحانی رابطہ ہے اللہ اور بندے کے بیچ میں. اس میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ تو روح کا رابطہ ہے. آپ دیکھیے, ایک شخص اکیلا پہاڑ کی کسی چوٹی پر ہے, کسی جنگل میں ہے, دریاؤں کے کنارے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے, وضو کیا, قبلہ رخ کھڑا ہوا اور اسی رب کے سکھائے ہوئے طریقے پہ کھڑا, رکوع اور قیام اور باقی کام کرتے کرتے اپنے آپ کو رب کے آگے جھکا دے, اس کو اگر نماز کہتے ہیں, ذرا سوچیے, اس وقت تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا अल्लाह को कितना अच्छा लगता होगा बंदे का ऐसे वक्त पे नमाज़ पढ़ना। वो आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि पहाड़ों की चोटियों पे सजदे और पहाड़ ऊँटों की और घोड़ों की पुश्तों पे बैठ के सजदे, जिहाद के मैदानों में नमाज़ पढ़ते थे सहाबे कराम। तो आप कह लीजिए, एक और कोड वर्ड लिख लीजिए कि नमाज के औकात मुलाकात के औकात हैं। अल्लाह से मुलाकात का तरीका नमाज, और इंसान इसका इंतज़ार करता है शौक़ से, लगन से, हैर से, लज्जत और उसके क़ुर्ब में वक्त गुजारने की तमन्ना उम्मीद बांध देती है। अजान मोमिन के लिए खुशी का पैगाम होती है, और इसीलिए तो आप देखिए कि अजान सुनते ही दिल से दुआ निकल जाती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जिसको अल्लाह से प्यार होगा, नमाज उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। और जब नमाज में एक ख़ास पोस्चर के साथ इंसान खड़ा होता है तो अल्लाह को प्यारा लगता है। आप देखिए, नमाज में सारी पोजीशंस हैं, लेटने की नहीं है, सोने की नहीं है, खड़े भी हैं, रुकू भी है, झुकते हैं। और अगर आप मखलूकात पे गौर करें ना, तो हर मखलूक मुख्तलिफ एंगल पे, कुछ खड़े हैं बिल्कुल पहाड़ों की तरह, घोड़ों की तरह देखिए तो रुकू है, और अगर आप छोटे जो बिल्ली और इस तरह के छोटे जानवर हैं तो वो सजदे की हालत में, कि उनका मुंह बिल्कुल उनके पाँव के साथ है। गोया कि नमाज बंदे को इस फीलिंग में लेकर आती है वो अशरफुल मखलूकात, लेकिन अल्लाह के आगे हर पोजीशन इख्तियार करने को तैयार है, और शुरू में खड़ा है और फिर बातें करता है और फिर रुकू में आजजी है, और आखिर तो जिसको कहते हैं कि नाक की लकीरें निकालने लग जाता है बंदा सजदे में, कि मालिक अब तो मेरे से तेरे सामने खड़ा भी नहीं हुआ जाता। इंसान को उसके गुनाह जो हैं वो अल्लाह के आगे इस तरह तोड़ के रख देते हैं। इब्ने मसूद ने फरमाया, रिवायत है अल्लाह के नबी की, यानी अल्लाह के नबी का कौल, कहा कि सबसे पहला, सबसे अफजल अमल कौन सा है? नमाज अपने वक्त पे अदा करना। सही मुस्लिम की रिवायत 5252 है। तो नमाज को मुश्किल ना करें। फिर और क्या है? नमाज रब की रहमत की बारिश है, जिस पर भी बरस जाए, जिनके दिल पाक होते हैं, जिनकी अक्लें सलीम होती हैं, जिनके दिल अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं, जो उनस और मुलाकात के शौक़ में अल्लाह की तरफ आते हैं, तो नमाज उनको दो आलम से बेगाना कर देती है। इसीलिए सहाबा कराम में किसी की पुश्त में तीर घुस गया जंग के दौरान, और हालत नमाज में जब निकाला तो उनको पता भी ना चला। और जब इंसान हकीकी ईमान का मज़ा चख लेता है ना, तो उसके लिए नमाज सिर्फ फिर इबादत और इताअत नहीं रह जाती। ये एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक जिस्म के साथ कुछ चीज़ें दोहराने का नाम नहीं, बल्कि इसमें लज्जत है और इसमें सुरूर है, और इंसान उस वक्त अपने आप को दूसरों से बेनियाज करता है। आप पता है कि नबी सल्लम कैसे नमाज का इंतज़ार करते थे? जैसे प्यास से बेहाल शख्स सहरा में पानी की तलब रखता है। आप हजरत बिलाल से कहा करते थे कि कुम या बिलाल, खड़े हो जाओ ए बिलाल, फरहना बिस्सला, फिर हमें नमाज के ज़रिए ठंडक पहुँचाएँ। अबू दाऊद की रिवायत है 4986। आप और मैं अपने आप से सवाल करें, क्या हमें भी नमाज में ठंडक मिलती है? आपने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। मुस्नद अहमद 1408 और निसाई 3391। क्या मेरी आपकी भी आंखों की ठंडक नमाज में है? और नमाज की खूबी देखिए, ये सिर्फ नबी सल्लम ने नहीं पढ़ी, पिछले अंबिया भी। मसलन हज़रत इब्राहिम की दुआ कुरान पाक सूरत इब्राहिम 40 में क्या पढ़ते हैं? रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ, कि अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे और हमारी दुआएं कबूल फरमा। हज़रत इस्माइल का जिक्र कुरान पाक में क्या आता है? सूरत मरियम 55। ज़बीहुल्लाह, इतना प्यारा नबी, और अल्लाह ने उनकी तारीफ क्या की, किसी को याद है? अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे, या अमुरु बिस्सलात। और हज़रत मूसा ने जब अल्लाह से पहला कलाम किया तो क्या कहा अल्लाह ने उनको भी? हुक्म किसका दिया? अकीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज का हुक्म, सूरत तौहा 14। लुकमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान में, बेटे को वसीयत की तो क्या कहा? या बुनैया अकीमिस्सला, नमाज कायम करो, सूरह लुकमान 17। हज़रत ईसा माँ के गोद से बोले गहवारे में तो क्या कहा? इन्नी अब्दुल्ला आतानी अस्सला आतानी अल किताब वल हिक्मा, और क्या कहा? مجھے نماز اوسانی بالصلاح، سورت مریم 31 میں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کو بھی اللہ نے خود نماز کا حکم دیا، کدھر؟ عنکبوت 45 میں. اور کامیاب ہونے والوں کی پہلی اور آخری صفت کیا ہے سورت مومنین کی ابتدا، سورت مومنون کی آخری شروع کی آیتوں میں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور آخر میں کیا آتا ہے؟ یحافظون. تو کیا پتہ چلا کہ نماز اہم ہے، اور نماز وہ دولت ہے جس کی حفاظت کرنی چاہیے. سورت بقرہ 238 کیا کہا اللہ نے؟ حافظوا علی الصلوات. میں آپ سے پوچھوں، ہم کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو بڑی سیکیور کر کے ہم نے لاکرز میں رکھی ہوئی ہیں، جس کو قیمتی سمجھتے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں جیسے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو ویسے نمازوں کی بھی حفاظت کرو. ایک سوال خود سے پوچھئے، کرتی ہوں؟ ہوتی ہے ہمارے سے حفاظت؟ ایک مہمان ہماری نمازیں چوری تو نہیں کر جاتا، ایک فون کال میری نماز تو نہیں کھا جاتی مغرب کی، اور اسی طرح کی باقی باتیں. کتنی شادیاں اور کتنی شاپنگز ہماری نمازوں کو کھا گئیں. اور ایک شادی کی تیاری، ایک بچے کی شادی کی تیاری، آپ ذرا اس کو ذہن میں لائیں. اور نماز کی ایک اور خوبی لکھی ہے، سارا دین، ساری شریعت زمین پہ دی گئی، اور نماز کی فرضیت کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا. نماز کا مرتبہ بلند ہے، ترمذی 385. اور ایک دن میں بار بار نماز پڑھنا گناہوں کے میل کچیل کو ایسے صاف کرتا ہے جیسے کسی کے گھر کے باہر پانی کی ندی نالی ہو، نالا ہو، پانی کی ندی ہو اور وہ اس میں نہا لے. یہ بخاری کی روایت 528 اور مسلم 1522 میں ملتا ہے. ہم سب سے دن رات غلطیاں ہوتی ہیں، پانچ بار غلطیاں معاف کروانے کا ذریعہ نماز ہے. اندر خواہشات اور غفلتیں ہیں، اس کو مارنے کا ذریعہ نماز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہر موقع پہ نماز کے لیے ندا دیتا ہے کہ بنی آدم اٹھو، اپنی اس آگ کی طرف جسے تم نے سلگا لیا اس کو بجھا لو، طبرانی کی روایت ہے. اور فرمایا بندہ مسلم جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے یہ 21889 اور سورت ہود 114. آپ نے ایک درخت کے پتے ہلا کے دکھائے اور پتے گرنے لگے تو آپ نے کہا کیسے نمازی کے گناہ گھر جاتے ہیں. اللہ کرے کہ میرے لیے نماز، آپ کے لیے نماز اتنی ہی قیمتی اور اتنی ہی اعلیٰ ہو جائے، اس وقت آپ سب چیزوں سے الگ ہو جائیں. دیکھیں ہم جتنی بھی باتیں پڑھیں گے نا، حکم کیا، فرض کیا، مسنون کیا، یہ کتابی باتیں ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہم نے ویسے پڑھنی ہے، لیکن اگر اندر روحانیت نہیں ہے، آپ کی میری نمازیں ایسی ہوں، مثلا آپ دیکھیے کہ آپ اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہیں، وہ باتیں کر رہی ہے اور آپ فون سے کھیل رہے ہیں، آپ سے وہ کچھ پوچھ رہی ہے اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کسی بھی رشتے میں آپ یہ برداشت کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں پہلے میری بات سنیں. اچھا میں نہیں بولتی، جب آپ چپ ہوں گے تو بولوں گی، کہتے ہیں نا. تو نماز کے دوران ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ جو بھولی بسری باتیں یاد آنے لگتی ہیں. اور نماز کے لیے فاتحہ کے لفظ کو اللہ نے کہا قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے بیچ میں ڈال دیا. یہ جو سورت فاتحہ نماز کا حصہ ہے نا، اس میں بھی حکمت ہے. کیوں نہیں کہ لا صلاۃ الا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کانورسیشن ہے، لائف چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، وائس کال چل رہی ہوتی ہے. کیوں کہا کہ ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جس کو آپ ویڈیو کال کہہ لیجئے، فیس ٹائم کہہ لیجئے، اور تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے، کبھی اگلا آپ کو دیکھ سکتا ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. آپ آج کی ساری ٹیکنالوجی کو سامنے رکھ کر بتائیں کون سی کال اچھی ہے، کس کے ذریعے پیاروں کو دیکھتے سنتے رہتے ہیں، آواز سے بات کافی نہیں؟ فیس ٹائم کھولیں، اسکائپ پہ آئیں، واٹس ایپ پہ آئیں، کبھی نماز میں یہ کیفیت لائے. سچ بتائیں، رونے کا مقام ہے. کیا ہمارا اللہ کو دیکھنے کا، اللہ کے چہرے پہ نظر ڈالنے کا جذبہ اتنا سٹرانگ ہے کہ کبھی موسیٰ کی خطرہ بے کیا کہنا چاہیے کہ بے اختیار بول اٹھے کہ ربی ارینی فانظر الیک، اے رب مجھے اپنا آپ دکھا، میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ہم پتہ نہیں وہ کبھی نماز کبھی حرم میں کوئی پڑھی ہو، کوئی لیلۃ القدر کی نماز ایسی ہو تو ہو، عام نمازیں تو ہماری ایسی نہیں ہیں. اور جو ہماری نماز ہے نا، یہ ہمارے تعلق باللہ کی چغلی کھاتی ہے. एक जुमला लिख लीजिए, अपने ताल्लुक बिल्ला को नमाजों के आईने में पहचानिए, बस। और जब बंदा अल्लाह की तरफ मुंह करता है, अल्लाह ताला दूसरी तरफ मुंह नहीं फेरता जब तक कि बंदा खुद ना फिर जाए। इब्ने माजा की एक रिवायत का बहुत प्यारी रिवायत है, खुलासा है, और रिवायत का नंबर है 1222। 3 दफ़ा 2 लिख लीजिए कि बंदा जब नमाज में होता है ना, तो अल्लाह ताला अपना चेहरा उसकी तरफ कर लेता है और उससे नहीं फिरता यहाँ तक कि वो खुद ना फिर जाए या उसका वुजू ना टूट जाए। और नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके लिए कहा गया, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, सूरत अल अराफ 31। हर नमाज से पहले जीनत ले लिया करो, यानी बरहना ना पढ़ो जैसे कि अरब मक्का के लोग करने लग गए थे। साफ सुथरे कपड़े पहनो नमाज के लिए, इबादत के लिए, अपने आप को स्पिरिचुअली तैयार करने के लिए। सफाई, तहारत, मिसवाक, खुशबू और अच्छे कपड़ों का एहतमाम करना चाहिए। ये एक मुसलमान की उस नमाज से और उस इबादत से मोहब्बत की अलामत है। निसाई की रिवायत नंबर 5 भी है। और आखिरी बात करके आगे चलती हूँ कि अल्लाह खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है, मुस्लिम 265। तो आपको मुझे अगर अपनी रूहानियत कम दिखे, स्पिरिचुअली इफ वी आर वीक, इफ वी आर डाउन, इफ वी आर डिप्रेस्ड, तो हमें नमाज में खड़े होना चाहिए। अल्लाह के नबी को जब कोई मामला मुश्किल लगता, नमाज की तरफ भागते। वस्ताइन बिस्सब्री वस्सला, एक ईमान वाला तो सारे लोगों की शिकायतें अल्लाह को लगाता है। इन नमाश को बसी व खुजनी इल्लाह, सारे शिकवे शिकायतें अल्लाह के लिए है। कितनी हैरत की बात है, दिन में 5 बार उसको दुख सुख सुना कर भी ढूंढते हैं और कहते हैं अब किसको सुनाए। माँ पास नहीं है, शोहर पास नहीं है, बच्चे पास नहीं है, और ये नहीं और वो नहीं है। और आपने वो हदीस सुनी होगी बुखारी की, आप जाकर खुद नोट करें अगर आपके घर में बुखारी है, 1142, कि रात को जब बंदा सोता है तो शैतान उसके बालों में गिरे लगाता है नॉट्स, और हर नॉट खुलती है नमाज के साथ। सुनी हुई है ना हदीस, हंड्रेड्स टाइम तो मैंने खुद कोट की हुई है पिछले सालों में, और आपने कहीं औरों से भी सुनी होगी। ये नमाज गिरहें खोलती है शैतान से। अगर जो नमाज नहीं पढ़ता ना, याद रखिए, जिसको भी आप हिदायत से दूर देखेंगे, गुस्से में चिड़चिड़ा, उसकी वजह यह है कि वो नमाज नहीं पढ़ता। जब आप नमाज पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद कुदरती तौर पे दिल खुश होगा। और कभी देखा करें जो फजर की नमाज जमात से पढ़ कर गुनगुनाते घर आते हैं, ऐसे लगता है चकी चीज से होकर आए, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं किस फन प्लेक्स से होकर आए। जो खुशी, जो कुरान की तिलावत, जो ताजगी, और जो फजर के लिए एक दफ़ा घर से निकल जाए मस्जिद में, सारा दिन उसका प्रोडक्टिव होगा, ये मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। उम्मीद है कि आपने अपनी चेकलिस्टों को करना शुरू कर दिया होगा। कल के दिन में की किस किस ने, क्या महसूस हुआ? अभी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, बेहतरी की, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारी नमाजें बेहतर से बेहतरीन पर ढल जाएं, खूबसूरत से खूबसूरती की तरफ चलने लगें। क्यों? इसलिए कि इससे हमारा ये नमाज इज़ नेविगेटर, बिल्कुल आपके दिन के 5 वक्त की नमाजें, इफ़ इट्स योर वर्किंग मैनुअल, इस नमाज से उस नमाज तक। और बल्कि मैं सोचती हूँ कि नमाज जो है ना, ये आपका एक ब्रेक है। सारा दिन आप दुनिया में भाग रहे हैं, उसके पीछे इधर उधर, बस अब मुझे सुकून से नमाज पढ़ने दो। और वाकई कुछ खवातीन तो इतनी बिजी होती हैं, अगर नमाज ना बेचारी पढ़े तो सारा दिन खड़ी रहें और चूल्हे में खाना बनाती रहें और काम करती रहें। तो नमाज इज़ योर पर्सनल टाइम, अपने बच्चों को बता दें, फोन्स को बंद कर दीजिए, घर में कोई भी उसको बता दें, इट्स माई ब्रेक टाइम नाउ। घर का एक ऐसा मखसूस हिस्सा जहाँ आप जाएं तो आपको मज़ा आने लगे, कोई डिस्ट्रैक्शन आगे ना, कुछ ना हो, तो आप वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ कर देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जब बहुत सारे लाउंजेस हैं हमारे घर में, तो सला लाउंज क्यों नहीं, ये लग बात है कि हम हर जगह पढ़ सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहती कि सिर्फ एक ही जगह पे सब पढ़ें, लेकिन कोई ऐसी जगह ज़रूर हो कि जहाँ आप थोड़ी देर जाकर उस स्पिरिचुअलिटी को महसूस करें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे फ़ायदा होगा। और याद रखिए कि नमाज छोड़ने वाला कारून और फिरौन लोगों के बीच में होगा। अल्लाह के नबी की इतनी ज़्यादा मतलब डरा देने वाली रिवायतें कि बेनमाजी का हशर क़यामत के दिन कारून के साथ होगा, फिरौन के साथ होगा, हमान के साथ होगा, उबई बिन हल्फ के साथ होगा। और आपने फरमाया जिसकी नमाज फौत हो गई, कौन सी? असर की, तो गोया कि उसके माल और अहलो याल सब फौत हो गए। ये मुस्लिम की रिवायत है 1417। इतना बड़ा नुकसान, और जिनकी सारी जा रही हैं। क्या कहा सूरत माउन आयत 4 एंड 5 में, وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. صحب حاصل کرنے والے, یعنی بھولے میں پتہ ہی کوئی نہیں, پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس بربادی سے اور ہلاکت سے بچا دے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک وعدہ کیا تھا خود سے, کیا کہ میں مرتے دم تک نماز پڑھوں گا, کیا وَأُوصِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. تو نماز مرتے دم تک ہے, یاد رکھیے. زندگی جا رہی ہے آپ کے ہاتھوں سے, اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے کہہ کے دکھا کر کے دکھا دیا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور مسند احمد کی روایت 5262 میں آتا ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر بھی اللہ کے نبی نے اپنی امت کو نماز کا پیغام دیا. اللہ کتنا اچھا لگا یہ اللہ اکبر اس وقت سننا, واقعی اس کو محسوس کیا کرے. اور قیامت کے دن پہلی چیز نماز ہے. طبرانی کبیر کی روایت ہے 1254 کہ جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کے باقی عمل بھی ٹھیک ہوں گے, اور اگر شروع میں نماز ہی خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی درست نہیں ہوں گے. اور نماز مومن کی معراج ہے, ترمذی 213. اور 50 نمازوں کا اجر ملتا ہے آپ کو 5 نمازوں پہ, کیوں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جب ایک کے بدلے میں 10 ہے. بخاری کی روایت 349 ہے. تو اب یہ تو تھا ذرا سا نماز کا روحانی پہلو. اسلام میں نماز کہاں ہے اور اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا گیا, کس طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے, تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے کہ نماز کا حکم کیا ہے. کیا آپ اور میں اس نماز کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات ہے کہ نماز فرض ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اتنے حوالے ہیں میرے پاس لیکن میں اس میں 3-4 بول دیتی ہوں, جو مرضی لکھ لیجئے. سورۃ عنکبوت 45, انبیاء 73, بقرہ 43, بخاری 1090, مسلم 1570, ابوداؤد 495. اور اس میں کسی کو کوئی کوشچن نہیں ہو سکتا کہ نماز فرض نہیں ہے. نماز فرض ہے, اس کی فضیلت کیا ہے؟ چند روایات کے نمبر آپ کو دیے ہوئے ہیں, صرف میں کوئکلی وہ حدیث بول دوں گی. اس میں کچھ تو پہلے بھی بات کر دی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بول دیتی ہوں. نمبر ایک, نماز نور ہے, مسلم 534. نماز سے گناہ جھڑتے ہیں, مسند احمد 179 جلد 5 ہے. نماز گناہوں کو مٹاتی ہے, مسلم 550. پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے, مسلم 543, بخاری 528. گناہوں کی آگ نماز سے بجھتی ہے, صحیح ترغیب. نماز سے گناہ سر پر سے گرا دیے جاتے ہیں, صحیح ترغیب 362. نماز سے درجات بلند ہوتے ہیں, مسلم 1093. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, نسائی 3391. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا, نسائی 468. نماز کی پابندی کرنے والا شہداء کے ساتھ ہوگا, صحیح ترغیب 361. نمازی کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں, بخاری 659. فجر اور عصر کی نماز پڑھنے والا دوزخ میں ہرگز نہیں جائے گا, صحیح مسلم 1436. جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا, اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا کہ اس نے ساری رات قیام کیا, مسلم 1491. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کے لیے رحمت کی دعا ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے, ابو داؤد 1271. فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے, مسلم 1688. اور جس نے خالص اللہ کے لیے 40 دن نماز سے جماعت سے نماز پڑھی تکبیر اولا پاتا رہا, کون سی ہوتی ہے؟ پہلی تکبیر اللہ اکبر, جس کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں, یعنی اس کے بعد باقی کام حرام ہو جاتے ہیں. مطلب مراد یہ کہ شروع وقت سے ہی نماز میں شامل تھا, کلاس کے آغاز سے ہی بیٹھا ہوا تھا یہ کہہ لیجئے. تو فرمایا 40 دن کوئی کر لے تو دوزخ اور نفاق سے بری, یعنی اس کی نجات لکھی جاتی ہے, ترمذی 241. مسجد میں اپنی نماز پوری کر کے اس کا کچھ حصہ اپنے گھر میں پڑھنے والا, اس سے اللہ تعالیٰ اس کی نماز میں برکت عطا کرتا ہے, مسلم 1822. और जो शख्स सुबह की नमाज का अदा करता है, जो शख्स सुबह की नमाज अदा करता है वो अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है, ज़िम्मा समझते हैं, सिक्योरिटी में इंश्योर्ड हो जाता है वो। 1493 सही मुस्लिम की रिवायत है। और जो रोज़ 12 रकत फ़र्ज़ नमाजों के अलावा नफल में से पढ़े अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं, सही मुस्लिम 1696। जो शख्स 4 रकतें जोहर से पहले और 4 रकतें जोहर के बाद पाबंदी से पढ़े अल्लाह ताला इस पर जहन्नुम की आग को हराम कर देते हैं, मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, नसाई और तरगीब 584। जो बंदा अल्लाह के लिए सजदा करता है अल्लाह उसके बदले में एक नेकी लिखता है और एक गुना माफ़ करता है, एक दर्जा बुलंद करता है, इब्ने माजा, सही तरगीब 386। तो इतनी तो आपके हाथों में ताकत ही नहीं है कि आप सारी हदीसें लिख सकें, इतनी फजीलत है। सवाल पैदा होता है कि हम अपनी नमाजों को देखें। इसके बाद अगर आप और मैं ज़रा सा अपना इल्म नमाजों के लिए लें, मैं बोलती हूँ सवाल, आप सब ऊंची आवाज़ से जवाब देंगे, फ़र्ज़ नमाजें कौन सी हैं? बच्चों वाला सवाल है, बोल दीजिए 5 नमाजों के नाम लें, नमाजों की रकतें क्या, सिर्फ फर्ज बोलें शुरू से तरतीब से। शाबाश, सुन्नतें कितनी हैं तरतीब से बोलिए। चले, जो आपने सबने बोली है वो मौकेदा है, जो सबने नहीं बोली वो गैर मौकेदा है। यानी ये देखिए ये टर्म्स मुश्किल लगती है ना, लेकिन हम सब पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फजर की सुन्नतों की कोई खास खूबी है, क्या खूबी है? नोट कर लीजिए, आपके ऐसे इधर नोट्स में नहीं है, लिख लीजिए, अच्छी फ़ायदा होगा। फजर की सुन्नतें बहुत अहम है। नंबर एक, इनको तवील नहीं करना चाहिए, बहुत लंबी नहीं पढ़े, वरना क्या होगा, फजर के फ़र्ज़ निकल जाएंगे। ये मुस्लिम 169 नंबर है। पहली रकत में सूरत काफिरून और दूसरी में सूरह इख़लास पढ़नी चाहिए, मुस्लिम 1690। फिर हाँ है ये पेज में, मेरे पास तो नहीं है, आपके पास इधर है तो फिर उसी में लिखिए, मेरे पास तो कुछ इधर आइए। अच्छा जी, 3 किधर है, ये इधर अजान कैसे आ गई, मिस फ्रेंड वो तो गुजर की ना, चलिए उसको अब छोड़ें। इस बहरहाल जहाँ आपके पास लिखा है मैं बोल देती हूँ, आप शीट पे सेट कर लीजिएगा। तीसरी बात यह है, यानी पहली क्या थी, तवील ना हो, दूसरी क्या है, सूरह काफिरून और सूरह इख़लास पढ़नी चाहिए। पढ़ते हैं आप लोग, कौन आप में से इन इन दो इन रकतों में ये सूरतें पढ़ता था? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तीसरा क्या है कि अगर फजर की सुन्नतें फ़र्ज या जमात से पहले ना पढ़ सकें तो तुलुए आफ्ताब से पहले पढ़ सकते हैं, यानी वैसे आम हालात में फ़र्ज़ों के बाद नमाज नहीं है, ममनू वक्तों में, लेकिन सुन्नतें पढ़ी जा सकती हैं, तिर्मिज़ी 422। फिर इसी तरह तुलुए आफ्ताब तक भी ना पढ़ सकें तो क्या करें, सूरज निकलने के बाद पढ़ लीजिए, तिर्मिज़ी 423। छोड़नी नहीं चाहिए। अच्छा छूट गई है, दिन में किसी वक्त भी उनको अदा कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए अगली चीज़ क्या है, नमाज के औकात, नमाज के वक्त क्या है। आप में से किसको पता है नमाज के औकात का शरई हुक्म, मतलब एक ये तो हम सबको पता है, वो कैलेंडर में देख के बताते हैं, आजकल तो ये आसान हो गया, चले जी वो फलां ऐप का नाम लिख देते हैं, वहाँ से जाकर देख लीजिए, लेकिन आप ये सारा पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह आगे जाकर आपको एक और बुक पढ़ाएंगे नए कोर्सेज में, जिसमें आप मज़ीद इन डेप्थ नमाज को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन नंबर एक, नमाज वक्त की पाबंदी। मैं चंद रैंडम बातें बोल देती हूँ जो औकात से मुतल्लिक हो सकती हैं, और जिसमें, और वो क्या है कि वक्त की पाबंदी से पढ़ने का हुक्म है। सूरह निसा 103 में आता है, इन्नस सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता। फिर वक्त की हिफाजत भी करनी चाहिए, सूरह बकरा 238। और वक्त पे नमाज पढ़ना वाजिब है, सही मुस्लिम 1465। बे वक्त वो क्या कहते हैं पंजाबी में, वेले दी नमाज, कवेले दियाँ टकरा, और जिनको पंजाबी, ठहरे शहीन इसका ट्रांसलेशन करो, इतना इल्म है इसके पास है, कवेला क्या होता है शायद, फैसला आप करें, वक्त की नमाज और बे वक्त की टकरें, टकरें टकरे, वैसे तो हमारी वक्त पे भी टकरे ही होती हैं क्योंकि हमने जाना होता है फौरन उसके बाद कहीं ना कहीं, हाँ, लेकिन नमाज वक्त पे और अच्छे तरीके से। और इस पे आप, आपको मैं कुछ काम देना चाह रही हूँ। बेसिकली किताबु सलात आप सब ने पढ़ी है ना, सबीलुल जन्ना में। आप में कितनी सिस्टर्स हैं जो सबीलुल जन्ना में नहीं थी, वो हैंड रेस करें, ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप किताबु सलात का कुछ हिस्सा इनके साथ पीडीएफ या उसका पिक्चर शेयर कर दें। इन चीज़ों का, सवालों का जवाब आपने खुद लिखना है। नंबर एक, क्या नमाजों के औकात क्या, उसमें आपको पूरे वो हदीसें बयान की गई हैं कि जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए थे, 2 दिन आते रहे बैतुल्ला के पास और आपकी इमामत करते रहे। पहले दिन नमाजों की इब्तदाई वक्त में और दूसरे दिन इंतहाई वक्त में पढ़ा कर कहा कि आपकी उम्मत के लिए वक्त इन दोनों के बीच का है। तो हमें शरण पता होना चाहिए, कभी घड़ी ना हो फिर क्या करेंगे। आपको तो कि सूरज से और साए के साथ है, स्टिक लेकर खड़े हो जाइए और इसको जाके गाड़ दें। जूं ही साया बराबर हुआ, जोहर का टाइम शुरू हो गया। जूं ही स्टिक अगर 1 फुट की है और ज़मीन पे 2 फुट की हो गई तो असर का वक्त शुरू हो गया। ये यूनिवर्सल वॉच है। अब आज गैजेट है, हर एक के पास अभी भी नहीं है ऐप्स वगैरह। तो जंगलों में, सहराओं में नमाजों के वक्त देखने के ये सारे तरीके होते हैं, ठीक है। फिर इसी के बाद आप देखिए, अजान और इकामत नमाज के साथ है। अजान क्या है, नमाज के वक्त की आगाही, अजान देना मशरू है। और इसी तरह से आप देखिए कि जब अजान दी जाती है तो उसमें किस चीज़ का इजहार होता है कि अब तुम्हें सबसे बड़ी हस्ती ने बुला लिया। और अजान सुनते वक्त सर पे दुपट्टा जरूर लेना चाहिए जी, और घर से बाहर जाते हुए और गैर मर्दों में जाते हुए। चले, काफी नॉलेज वाले हो गए हैं माशाल्लाह। हाँ जी। और एक वक्त पे भी मैंने देखा है, शादियों में गए हैं बेचारे, खूब पने बने, और जू ही मौलवी साहब निकाह पढ़ाए और बेचारे कुछ होश, वो माइक पे ले लें, टिश्यू पेपर पकड़ के सरों पे रख दी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब वो ख़त्म होता है तो ऐसे बड़ी अदा से सर हिलाती हैं, उड़ जाता है। तो ये एक तकल्लुफ है और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस हीट में जो लफ्ज़ मैं अभी नहीं बोल रही उसका मतलब यह है कि आपने खुद लिखना है। कहाँ से देख कर लिखना है, किताबुल सलात में से लिखना है। इसमें आपने पूरी अजान लिखनी है। मेरा दिल कह रहा था आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से अजान लिखें और उसको महसूस करें। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अजान की इब्तदा कहाँ से हुई थी। जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना में आए, शुरू में नहीं थी, किसी ने कहा घंटी बजा दी जाए, जैसे नसारा का एक घंटा सा बजता है, कुछ ने कहा बिगल बजा दें यहूद की तरह। तो ये इब्ने उमर की रिवायत है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम ने इन दोनों तरीकों को नहीं पसंद किया। और हज़रत उमर ने कहा ऐसा करते हैं, एक आदमी को जाकर शहर में जहाँ लोग होते थे वहाँ भेजते हैं और वह लोगों को कहें चलो जाओ नमाज, आओ नमाज पढ़ो। इब्तदा में ऐसी थी। फिर आपने हजरत बिलाल को भेजा उमर की इस राय पे और उन्होंने बाजार में जाकर लोगों को आवाज लगाई। कोई अजान के लफ्ज नहीं थे शुरू में, बस ऐसे ही था आवाज लगा दो। फिर उमर अबू बक सॉरी हजरत बिलाल कहते थे जब लोग जमा होते थे तो अल्लाह के नबी उनको कहते कि ए बिलाल उठो और नमाज के लिए अजान दो। ये बुखारी की रिवायत है 604। क्या पता चला कि ये इब्तदाई मराहिल से गुजरती गई, लेकिन ख्वाब में अल्लाह ताला ने फिर एक सहाबी को नमाज के अल्फाज सुनवाए थे और वो जब उन्होंने आकर बयान किए तो उसके बाद फिर वही तरीका मरवज हो गया जी। और वो शख्स कौन थे, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। क्या नमाज अजान देना फ़र्ज़ है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या आबादियों में इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं अजान देना फ़र्ज़ है, ये उनका मजमा फतावा है, 67-68 फतवे का नंबर है, नोट कर लीजिए। लेकिन यह है कि मस्जिदों में तो अजान होनी चाहिए। आपने एक शख्स को यमन में भेजा था, कहा जब नमाज का वक्त हो तो एक शख्स अजान दे और जो तुम में सबसे बड़ा हो वो इमामत कराए। बुखारी 6628 है। फिर इसी तरह से अजान के अल्फाज आपने खुद लिखने हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आपने दी नहीं, हम तो नहीं दे सकते, क्या औरत अजान दे सकती है? औरत नहीं दे सकती। औरत इमामत बंद कर सकती है, खुतबा जुमा दे सकती है, इसकी हिकमत क्या है? फिर ये काम भी मस्जिदों में औरतें ही कर रही होती हैं और मर्द आराम फरमाते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है आपने मस्जिद से औरत को फारिग करके कितना बड़ा एहसान किया, राइट। लेकिन बहरहाल ये है, अजान सुनने वाला क्या करे, लिख लीजिए। नंबर एक, अल्फाज को दोहराए, सही बुखारी 611। फिर फिर जहाँ हय्या अलल सलार हय्या अलल फलाह के अल्फाज आएंगे तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला कहे, बुखारी 613। फिर एक मौज़िन का जवाब देंगे। अब बस कई मस्जिदों से अगर अजानें आ रही हैं तो सब का जवाब देना नहीं है, क्योंकि हदीस में तकरार नहीं है, ठीक है। और अजान के वक्त पे यानी एक दफ़ा कम अज़ कम खामोशी से सुन लेना चाहिए। ये बताइए कि अजान के बाद की दुआ आती है आपको? अजान के बाद की दुआ अगर मैं आपसे कहूँ कि आप खुद लिख कर लाएं तो कौन कौन लिख लेगा? रेफरेंस मैंने लिख दिया आपके लिए, बुखारी 6 मैंने नहीं लिखा, यानी लिखवा दिया है, क्योंकि गलतियाँ मैंने नहीं की जो इसमें हैं। मैं सोच रही थी कि इस शीट के साथ आपकी उर्दू भी अच्छी हो रही है। ये भी एक क्वेश्चन है कि आपको उर्दू पढ़नी आती है कि नहीं आती। तो बहरहाल ज़रा मिल के पढ़ेंगे या मैं साथ बोल दूँ? पढ़िए मिल के नमाज के अजान के बाद की दुआ। जी बस लफ्ज़ यहाँ तक है, बुखारी 614 में वत्तलो। टीवी पे अक्सर जो आती है उसके आगे एक और इजाफा होता है, इन्ना का ला तुखलिफुल मियाद। वो किसी और हदीस में हो सकते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन याद रखिए किसी सही हदीस से अजान के बाद मुअज्जिन का अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह और इस किस्म के कोई और लफ्ज़ पढ़ना ये साबित नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद ये है गुना होगा। जी बिल्कुल गुना होगा, पूछें किस बात का? क्योंकि अल्लाह के नबी और सहाबा ने नहीं पढ़ा। दीन वही है, जहाँ रोको रुक जाओ, जहाँ कहो चल पढ़ो, ठीक है। फिर इकामत जो होती है वो अजान के बाद दी जाती है और उसके बाद फिर नमाज होती है। इकामत में और अजान में क्या फ़र्क है? ये देखिए लफ्ज़ मेरे, तकरार का फ़र्क है। जो जुमले अजान में 2 दफ़ा बोले जाते हैं वो इकामत में 1 दफ़ा बोले जाते हैं। मकसद क्या है कि वो जो वुजू में पानी ज़ाया कर रहे हैं वो जल्दी से आकर नमाज के लिए खड़े हो जाएं, ठीक है। क्या इकामत का भी जवाब देना चाहिए? कद कामत सलाह, कद कामत सलाह के अल्फाज मिलते हैं कि वो आवाज़ आती है, जैसे मौज़िन के लिए अजान तो पूरी दोहराई जाती है लेकिन इकामत पीछे दोहराई नहीं जाती। क्या इकामत के बाद की भी कोई दुआ है? कोई दुआ नहीं है, ऐसे वक्त में सिर्फ बैठे खड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए कि नमाज की कुछ शरायत हैं। अब आपने चाहा कि नमाज पढ़े, नमाज की इस्लाम में हैसियत क्या है? चंद जुमले हैं सिर्फ, बस ख़त्म हो रहा है ये टॉपिक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर एक, नमाज की फर्जियत की शरायत में इस्लाम, मुसलमान होना शर्त है। सूरह तौबा 17, बुखारी 2, 5 और 8 भी है। दूसरी बात, अक्ल हो यानी मजनू ना हो शख्स, जब तक यानी मीन दीवाने से नमाज माफ़ है, ये कह लीजिए अबू दाऊद 4402। तीसरी शर्त है नमाज की बलूगत, पुबर्टी, और अमूमन इसके लिए हमारे ना हाँ जो हदीस से उम्र मिलती है, 7 साल की उम्र में हुक्म दो और 10 साल का होने पे ना पढ़े तो सख्ती करो, ठीक है। और चौथी शर्त है नमाज का वक्त हो जाए फिर पढ़ें, वक्त से पहले ना पढ़ें क्योंकि बाज़ार जाने और वहाँ जाकर पढ़नी मुश्किल लगेगी, ऐसा ना करें। निसा 103 और अबू दाऊद 393 है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्या है कि किन शरायत पे नमाज कबूल होगी? लिख लीजिए, नंबर एक वुजू और तहारत, यानी जो बोल रही हूँ इससे ऑपोजिट होगा तो कबूल नहीं होगी, ये कह लें, बुखारी 135 और अबू दाऊद 60। नंबर दो, सतर ढांपना चाहिए, मर्द और औरत का सतर ढका होना चाहिए, और औरत के लिए तो ख़ास लिबास है पूरी नमाज का कि मुंह और हाथों के सिवा पूरा जिस्म ढक जाए। ये सतर वाली जो बात है ये सूरत अराफ 31 और अबू दाऊद 641 पे है। फिर किबला रूह होना, ये तीसरी शर्त है, सूरत बकरा 150। फिर इसी तरह किसी उज़र की वजह से या सवारी पर हैं और पीछे हो जाए, बाद में किबला बदल जाए तो वो और बात है। जिस तरह हर चीज़ के अरकान हैं, क्या नमाज के भी अरकान हैं? बिल्कुल अरकान है, 10 अरकान है, जल्दी से लिख लीजिए। कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ अरकान हैं, कोई फ़र्ज छूट जाए तो नमाज पूरी नहीं होती। मसलन नंबर एक, नियत करना, बुखारी 1। तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर कहना, इब्ने माजा 276, अबू दाऊद 618। ये भला क्यों है? देखिए हम अल्लाह के सामने कहते हैं अल्लाहु अकबर, सब पीछे तू आगे, यानी ये एक किस्म का कॉल मिलाना है कि अब हमारी कॉल मिल गई, अब बीच में कोई नहीं आए। तीसरी चीज़ है फ़र्ज़ नमाज़ों में क़याम करना। गौर से सुनिएगा इस इशू को, बकरा 238, बुखारी 1117। ये है वो वजह जिसकी वजह से, अब जुमला गौर से सुने क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलती भी करते हैं और सवाल भी पूछते हैं, फ़र्ज़ नमाज सवारी पर बैठ कर अदा नहीं होती। बात समझ गए, फ़र्ज़ के लिए खड़ा होना लाजमी है। दूसरी बात है कि आपके घुटनों में दर्द है, नीस का प्रॉब्लम है, टखनों में दर्द है, आप रुकू नहीं कर पाते, आप सजदा नहीं कर पाते, बट आप खड़े तो हो सकते हैं, तो खड़े होना फ़र्ज़ है, नमाज का रुकन है, लिहाजा अगर ये जान के छोड़ देंगे तो नमाज नहीं होगी। नेक्स्ट थिंग, सूरह फातिहा पढ़ना, ये फ़र्ज़ है, कुरान नमाज का रुकन है। बुखारी 756 और मुस्लिम 874 है। नेक्स्ट रुकू करना, बुखारी 826, 786, 794, 793। यानी इट्स टू, देखिए कि ये सारे रेफरेंस बुखारी में है, और मेरे पास एक ऐसी बुक थी कि जिसमें सिर्फ नमाज के ऊपर जो बुखारी का बाब है वो इतनी मोटी, बुखारी का सिर्फ वो टॉपिक, बल्कि बाकी भी हदीस की किताबों में से नमाज का टॉपिक, क्योंकि आज हमारी उम्मत लड़ती ही ज़्यादा नमाज के मौजूद पे, तो हमेशा हदीस की रेफरेंस से देखें। छठा रुकन क्या है, रुकू से सर उठाकर इत्मीनान से खड़े होना, बुखारी 795, मुस्लिम 865। यहाँ भी थोड़ी सी बात करूँगी, कुछ लोग अभी सीधे खड़े भी नहीं होते तो फ़ौरन सजदे में जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत हदीस है, नुखबतुल हदीस में भी है, बुखारी की रिवायत है, जब तक कमर सीधी ना हो, देखिए आप खड़े हैं, ये आप खड़े हैं, ये आप रुकू में, अच्छा रुकू कैसे करना है, यूं, ये मेरी पोजीशन ठीक है, और यूं यूं करना है, 90 का एंगल, ठीक है, कुछ रख लें ऊपर तो गिरे ना। अब इसके बाद अभी यूं हुए और फौरन सजदे में नहीं, यूं है दोबारा सीधे होंगे, ये है असल में चीज़ कि रुकू के बाद सीधा खड़ा होना। नेक्स्ट थिंग है सात अज़ा पर सजदा करना, मुस्लिम 1098 और इब्ने माजा 882। सात अज़ा करें ना, कौन से होते हैं ज़रा गिने मेरे साथ जल्दी से, आप देखिए दोनों हाथ रखते हैं ना, ये चीज़, फिर उसके बाद दोनों घुटने, पाँव दोनों मुड़ते हैं, और माथा ऐसे लगना है कि आपका माथा और नाक दोनों लगे, ये सात बनते हैं। अगर कोनिया ज़मीन पर टिका लेंगे तो ये नौ हो जाएंगे। औरत को या मर्द को, किसी को भी नमाज के सजदे के दौरान कोहनियाँ ज़मीन पे नहीं बिछानी चाहिए, बस अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आठवीं चीज़ है सजदे से सर उठाना। अब ये नहीं कि एक सजदा किया और अभी थोड़ी सी कमर सीधी भी नहीं हुई तो वापस चले गए, पूरी कमर सीधी कीजिए फिर वापस आइए। नेक्स्ट रुकू सजदे क़याम और जलसे में इत्मीनान, यानी नौवीं शर्त लिखी इत्मीनान, हैज़र्ड की नमाज नमाज नहीं होती। बुखारी 62954, सॉरी 6251 और मुस्लिम 885। और फिर आखिरी कादा, कादा क्या होता है, बैठना और उसमें तशहुद। फिर 11वीं क्या है, सलाम और सलाम के लिए बैठना, तिर्मिज़ी 3। और आखिरी बात, नमाज के अरकान में तरतीब का ख्याल रखना, अबू दाऊद 618। क्या पता चला, रुकू बाद में कर लें सजदे पहले कर लें, नहीं होगी, यही मुराद है इसका, ठीक है। कुछ चीज़ें नमाज की सुन्नतें हैं, इसी पे लड़ती है सारी उम्मत। आज आप देखेंगे कि जितने फिकी इख्तलाफात हैं वो फ़र्ज़ों पे नहीं है, अरकान पे नहीं है, सुन्नतों पे है। नंबर एक, आप देखिए कि सुन्नतें कुछ ऐसी होती हैं जो हमेशा की अल्लाह के नबी, जो उनको मौक्दा कहते हैं, कुछ कभी की कभी नहीं की, गैर मौक्दा है, दोनों को जमा करके बोल देती हूँ, हमारे लिए नबी की सुन्नत ही बड़ी अहम है, चाहे हमेशा की या कभी की। हालत क़याम में हाथ बांधना, ये जब नमाज में यहाँ अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधते ना, ये रुकन नहीं है। आपने देखा होगा झगड़े हैं, अरब लोग हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं। और अगर आपने नमाज के डिफरेंसेस देखने हैं तो हरम में अल्लाह आपको ले जाए। मैं कहती हूँ अल्लाह ने इन सब की भी तो कबूल करनी है ना, तो हम पाकिस्तानी इंडियंस की ये चार फिरके क्यों नहीं एक दूसरे को बर्दाश्त करते। हरम में जाकर दूसरों की नमाज देखकर लगता है हमसे अच्छी को पढ़ता ही नहीं है, बिलीव मी, कोई हाथ खोल रहा है, कोई बंद कर रहा है, तो हाथ बांधना फ़र्ज नहीं है, ये सुन्नत है। मुस्लिम 40, अबू दाऊद 724 और मुस्नद अहमद का भी रेफरेंस है 22313, ठीक है। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत करना, बात ज़रा सुन के हैरान हो, अगर सूरत फातिहा के बाद आप कुछ भी नहीं पढ़ते तो नमाज हो जाती है, हो जाती है। अब आज से यही ना शुरू कर दें। हमें मसला भी तो यही है ना कि हम अपनी खुशी के काम करते हैं, ये सुन्नत है। अब देखिए ना, मैंने जब ये फर्स्ट टाइम मौजू समझा मुझे सारी बात समझ आ गई। आज उम्मत के इख्तलाफात और फिरकों की वजह ये बेकार बातों पे झगड़ना, हाय हस्तगफिर। और नमाज में खुशू है कि नहीं इस पे किसी को कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह मुकम्मल सूरत या एक दो आयत की तिलावत करना, पूरी सूरत पढ़ ले, सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ ले, आपकी मर्ज़ी है। फिर इसी तरह फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की पहली दो रकतों में सूरत फातिहा के बाद कुरान मजीद की तिलावत करना, पहली दो रकतों में करने की ज़्यादा दलील है। तीसरी चौथी में कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, ना करें तो गुनाह नहीं, बुरी बात नहीं, करें ना करें आपकी चॉइस है। फिर इसी तरह इमाम हैं या अकेले मस्जिद में यानी जमात है, समय अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, और जो पीछे पढ़े उनका क्या कहना, रब्बना वलकल हम्द कहना, ये भी मसनून है बुखारी की रिवायत 796। अच्छा, रुकू में तीन बार सुबहान रबी या लजीम कहना, ये क्या है? सुन्नत है। तीन बार सजदे में सुबहान रबी या लाला कहना, सुन्नत है। मुस्नद अहमद अबू दाऊद 870 है। अब आप ज़रा आज ज़रा ये पढ़ के आपको लग नहीं रहा कि हमारी कितनी घुटी हुई नमाजें हैं? कई दफ़ा लोग सिर्फ इसलिए ईशा पढ़े सो बगैर सो जाते हैं कि 17 रकत नहीं पढ़नी, लंबी लगती है। आप उन्हें कह दें फ़र्ज़ पढ़ लें, चले सुन्नत बाद में पढ़ लें, कहेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप लोगों ने नमाज छोटी कर दी। ठीक है, तो ये सारी झगड़े की बातें नहीं, पढ़नी ऐसे ही है जैसे आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी किसी वजह से अगर इसमें कोई कमी बेशी हो तो वो अरकान नहीं छोड़ने, इनमें कोई छूट गया तो खैर है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सजदा करने के लिए जाते हुए और सजदे से ऊपर उठते वक्त तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहना, और इसी तरह पहला और दूसरा तशहुद, ये भी सुन्नत है। तो पूरी नमाज तो फिर वही तीन चार चीज़ें रह जाएंगी अगर आप हदीस को निकालेंगे। यहाँ एक बात समझिएगा, आज फितना इनकार हदीस वालों ने नमाज को बस वो चार कामों पे रोक दिया, उन्होंने सब निकाल दिया, कहते हैं कुरान में नहीं है। तो फिर निकाह का तरीका किधर है कुरान में? कितनी चीज़ें हैं हमारे दीन की जो इस कुरान में है ही नहीं। तो यहाँ फिर वो बात याद रखिए, सल्लू कमा रही तुमोनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है, पढ़नी ऐसे ही है। लेकिन सिर्फ एक आपको बताया जा रहा है कि अगर आपकी कोई चीज़ छूट गई तो कौन सी छूटे तो नहीं होनी, और कोई छूट गई तो इट्स ओके, उसका अजर कम हो जाएगा लेकिन नमाज कबूल फिर भी होगी। इसी तरह तशहुद पढ़ना, अत्तहियातु लिल्लाह, सुन्नत है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है 897। इसी तरह जहरी नमाजों में ऊंची किरत करना, मगरिब और इशा की पहली दो रकतों में। अब मिसाल है कोई इमाम या आप में से कोई मिल के सिस्टर्स नमाज पढ़ रही, आप भूल गई पहली रकतों में ऊंची पढ़ना, आदतन आपने आहिस्ता पढ़ ली, होता है ऐसा, तो क्या वो नमाज हो जाएगी? सवाल समझे, हो जाए। कोई इमाम साहब मगरिब की नमाज मस्जिद में पढ़ा रहे थे, गलती से आवाज़ ऊंची नहीं की, कम आवाज़ में पढ़ दी, हो जाएगी? हो जाएगी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इस देखिए, जमात के साथ भी होता है, खुद हमेशा अकेले पढ़ें, इतनी पढ़ें कि आपके कान सुने, ऐसे ही नहीं कि होंठ भी ना हिलें और अल्लाह अकबर, थोड़ी सी आवाज़ के साथ पढ़नी चाहिए। फिर इसी तरह से आप देखिए अत्तहियात के बाद जो दुरूद पढ़ना है, ये भी सुन्नत है। सिरी नमाजों में आहिस्ता किरत करना, बहुत कुछ है। असल बात यह है कि आपको मुझे इस बारे में बहुत अभी वक्त लगाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी सुन्नतें हैं, मसलन दुआ इस्तफ्ताह, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का, या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना, ये भी ऐसी हैं। आप अल्लाह के नबी पढ़ते थे, कभी कोई पढ़ लेते थे कभी कोई। फिर इसी तरह से सूरह फातिहा के बाद आमीन कहना सुन्नत है, अच्छा अमल है, करना चाहिए। यहूद इस पर रश करते हैं, ये बुखारी की रिवायत 6402 है। कई लोगों ने आज सिर्फ सूरह फातिहा के बाद आमीन की वजह से मस्जिदें अलग कर ली। रफुल जदैन करना सुन्नत है, ऐसी प्यारी सुन्नत है, मुस्लिम की रिवायत 864 और बुखारी 737। और मेरे पास इतनी बड़ी बुक थी, उसका नाम था तर्कु रफुल जदैन फी, यानी कुछ उसका मफहूम इस तरह से था कि सिर्फ रफुल जदैन का मौजू अहादीस की रोशनी में, मैं गलत ना बोल दूँ तो शायद उसमें 347 हदीसें, जिसमें से एक हैंडफुल नंबर सिर्फ बुखारी और मुस्लिम का था, जिसमें सहाबी नबी के नमाज पढ़ने के अमल को बताते हैं, क्योंकि ये सारा हमें विजुलाइज करके मिला। अल्लाह के नबी ने बैठ के हमारी तरह बोला नहीं था कि ये पढ़ो तो वो पढ़ो, पढ़ते हुए सहाबा देखते थे, वही जाके आगे लोगों को बताते थे। और उसमें आपको रफुल यदैन यानी दोनों हाथ उठाना रुकू में जाने से पहले, रुकू से उठने के बाद, और इसी तरह से तीसरी रकत में दोबारा खड़े होते हुए। अब आज इसके ऊपर मसले बन गए, आप देखिए रफुल यदैन करते हैं, आले को मस्जिद से भगवा देते हैं, उसको डांटते हैं कि तुम तो वहाबी हो। तो ये तंग नजरी की बातें हैं, इन बातों पे झगड़े नहीं करने चाहिए। इसी तरह दो सजदों के बीच में दुआ करना सुभान जी वो सुन्नत है, करनी चाहिए। बुखारी की रिवायत है 723, और भी दुआएं हदा से। तो कहने का मकसद ये है कि नमाज को नबी सल्लम की नमाज से मैचिंग करना चाहिए। अभी मेरे पास और भी बहुत लिखी हुई हैं सुन्नतें, लेकिन मैं इसको वाइंड अप करना चाहती हूँ, क्योंकि आप इंशाल्लाह इसको अपनी, बल्कि छुट्टियां जब आपको मिलेंगी इस कोर्स के बाद, तो कोशिश करके इसमें गो थ्रू करके सिर्फ किताबुस्सलात का बनाए। और मैं इनको कह दूं कि आपको ऐसा असाइनमेंट दें कि उसमें आप पूरी किताब को अपने प्यारे प्यारे हाथों से उसकी हेडिंग्स लिख लें। ये क्या हुआ फेस को? अल्लाह अकबर, आप परेशान हो गए थे। चलिए आखिरी चीज, सुतरा। सुतरा क्या होता है? जो बच्चे उठा के ले जाते हैं, जब भी सुथरा रखा बच्चे उठा के ले गए, और सारी चारों तरफ भाग रहे होंगे, जो ही नमाज पढ़े सबको छोड़कर आपके सामने आते हैं। तो सुथरे के लिए भी याद रखिए, सतर से है, एक ढाल हो जाना। नमाजी चूंकि अल्लाह सुबहाना तआला के साथ बातचीत कर रहा होता है ना, तो बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ रख लेना चाहिए ताकि डिस्ट्रेक्शन ना हो। पसंदीदा अमल क्या है कि दीवार से इतने फासले पे खड़े हों कि बस उसके आपके सजदे की ही जगह हो, बहुत दूर भी। अब जैसे इस रूम में है ना, तो आपको अगर इधर किबला है ना, तो यहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़नी चाहिए। आप वहाँ खड़े हैं, इतना लंबा गैप है, तो कोई गुजरेगा ना, कोशिश करनी चाहिए। और अगर फिर भी कोई ऐसा माहौल ना हो दीवार का, तो फिर आगे कुछ रख लीजिए। और सुथरा कितना होना चाहिए? तकरीबन 1 फुट, यानी ऐसी चीज़, बाज़ दफ़ा आपका बैग भी सिर्फ उसी में आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ जिससे दूसरों को पता चल जाए कि आप नमाज़ पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं। सुथरा यानी ओट को कहते हैं, ठीक है? वाजिब है, इसके बगैर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। बाज़ लोग मस्जिद में सुन्नतें पढ़ रहे होते हैं और लोग आगे से गुजर रहे होते हैं, तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है। फिर इसी तरह से शैतान नमाज में रुकावट डालता है, इससे अल्लाह के नबी ने बचने के लिए ये हुक्म दिया, नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। आपने फरमाया कि अगर पता लग जाए कि इसका कितना गुनाह है, तो 40 साल तक बंदा वहाँ खड़ा रहे लेकिन नमाजी के आगे से ना गुजरे। ये बुखारी की रिवायत है, नोट कर लीजिए, 510, और मुस्लिम 507। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को समझाइए, शैतान उनको लेकर ऐसे आगे पीछे दौड़ाते, बहुत छोटे हैं ना अभी, अक्ल नहीं और बात है, लेकिन जो ही 3-4 साल के होने लगे तो उनको समझाइए कि नमाज के आगे से नहीं गुजरते। बिलफर्ज़ को गुजरने लगे तो क्या नमाजी को उसको रोकना चाहिए? रोकना चाहिए। आपने फरमाया अगर वो बाज ना आए तो उससे लड़ाई करो, क्योंकि वो शैतान है, बुखारी 509 है। अच्छा, इमाम के सामने सुथरा है, जैसे आप आरसीए मस्जिद में गए, इमाम साहब के आगे तो होता ही है, अब आप सारी सिस्टर्स पीछे पढ़ रही हैं, तो क्या आपको दोबारा रखने की ज़रूरत है आगे? नहीं ज़रूरत। इसीलिए तो हरम में देखिए, आगे से लोग गुजर रहे, तवाफ़ कर रहे, कुछ भी कर रहे, आपकी जमात की नमाज को कुछ नहीं होता। इमाम का सुतरा मुक्तदी के सुतरे के को किफ़ायत कर देता है। कितना फासला आना चाहिए सुतरे और नमाज में? एक बकरी के गुजरने का फासला, बुखारी 594 है। फिर इसी तरह से ये सुतरा भी हो गया, आगे क्या है जी? नमाजे, अच्छा नमाज का मसनून तरीका, आपको ये एक शीट दी जा रही है, अगर आप ये देख लीजिए, जुबान का अमल और अज़ा के अमल और अहकाम, बैक एंड फॉर्थ फोर्थ है, इसको रख लें इंशाल्लाह। इसको एक्सप्लेन आपको किस तरीके से करना है कल थोड़ा सा इस पर जिक्र करूंगी, लेकिन ये आपने खुद लिखना होगा, ये एक किस्म का आपका पार्ट ऑफ असाइनमेंट होगा। लेकिन नमाज में कुछ लफ्ज़ हम बोलते हैं, वर्ड्स जिसको कहते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का, और दूसरी चीज़ है एक्शंस, रुकू क्याम सजदा। पूरी नमाज आप अहादीस की रोशनी में इसमें लिख सकते, मैं भी अभी लिखा सकती हूँ, पर फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, तो तकबीरे तहरीमा, फिर उसके बाद क्याम है, और इसी तरह रुकू कौमा सजदा, दो सजदे, फिर बीच में होना, एक एक चीज़ की दलील मौजूद है कुरान में। हमारा दीन इतना कॉम्पैक्ट दीन है कि आप नमाज में भी अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो असल में ये इस चीज़ की बात है कि आपने बाकी ज़िंदगी में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पे अमल करना है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
जुम्मे की नमाज में बाज़ औरतों के छोटे छोटे बच्चे आगे से घूमते रहते हैं, तो जो नमाज पढ़ने वाला उसकी नमाज पूरी जायज़ है या कि उस बच्चे को सिर्फ नमाज के दौरान रोक लेना चाहिए?
देखिए, जब जुमे की नमाज जमात के साथ हो रहा है, जो 2 रकत है उसमें तो कोई भी गुजर जाए तो कोई हरज की बात नहीं है। दूसरी सूरत, अगर आप सुन्नत नफिल पढ़ रहे हैं तो कोशिश करके आप जगह ही ऐसी ढूंढें, सहाबा की आदत थी, जो ही नमाज हो जाती थी सतून ढूंढते थे, स्तून क्यों ढूंढते थे कि हम कोनों में जाकर पड़े हैं, तो जितना अवॉइड कर सके करने की जरूरत है जी। पूरी कोशिश करें, फिर आप अपने आगे कुछ चेयर रख लें। मैं सबसे पसंद, मुझे क्या अच्छा लगता है, कोई सिस्टर मस्जिद में कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ रही है ना, मैं उसके पीछे खड़ी हो जाती हूँ। अब उधर से तो कोई नहीं गुजरेगा ना, तो ये तो बहरहाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने इसको कवर कर भी लिया है। अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हमारी नमाजें ज़िंदा हो जाएँ। नमाज के बाद के मसनून अज़कार हैं, फिर इसी तरह बाद जमात नमाज है, इसकी अहमियत है। औरतों पे फ़र्ज तो नहीं है, लेकिन एहतमाम करके घर में अगर मर्द हैं, बच्चे हैं, कोई नमाज़ पढ़ रहे हैं, कम से कम कोई एक नमाज़ जमात से पढ़िए। इससे सारे वक्त पे पढ़ लेते हैं। और बच्चों को कहिए पढ़ें, आपके जवान होते हुए बच्चे 8-9 साल के हैं, अगर उनको नमाज़ आती है, तहारत का एहतमाम करते हैं, आप उनको इमाम बनाइए। माएँ सिखाती हैं बच्चों को इमाम बनना इंशाल्लाह। आप सिर्फ सिस्टर्स ही हैं घर में, औरतें हैं, मिलके पढ़ लें। औरत इमामत में आगे नहीं आ सकती, यानी आप लिख लें कि औरत इमाम नहीं बन सकती, मिलके नमाज़ पढ़ सकती हैं। उससे क्या होता है, घर में दो औरतें, माँ बेटी हैं, बहनें हैं, कोई भी रिश्ता होता है, तो मिलके पढ़ लें, एक तो फौरी पढ़ी जाती है और अजर आपको भी उतना ही मिलेगा जितना मर्दों को मस्जिद में जाकर पढ़ने का अजर मिलेगा। तो मैं ख्वाहिश करूँगी कि आप किताब सलात में से ये सारे टॉपिक, बाद जमात नमाज, सफ़र की नमाज, कसर नमाज, सलातुल खौफ, इसको एज़ सुन एज़ जब भी आपको मौका मिले दोहरा लें, ताकि हम इस सफ़र के अंदर कम अज़ कम अपने सारे दीन को गो थ्रू तो कर सकें। जी आप जी जो पढ़ेगी वो थोड़ी सी ऊंची आवाज से पढ़ेगी सब कुछ, और अल्लाह अकबर ऊंची करेगी, बाकी उनके पीछे साथ उनके साथ रहेंगी। ठीक है, फिर इसी से मस्जिदों की भी हुरमत है इंशाल्लाह, उसको भी देखेंगे जी। दरमियान में आगे नहीं खड़ी होगी, और जब औरत पढ़ाए तो एक इधर, फिर राइट, तीसरी औरत आएगी तो लेफ्ट, चौथी आएगी तो राइट, पाँचवीं, यानी ऐसे सफ बढ़ती है, मिडल से शुरू होती है। जी आप पीछे से जब उठें फौरन जमात कर लें, यानी अगर खुदा ना खास्ता किसी बीमारी या सफ़र या किसी में नमाज कज़ा होगी, सब नहीं नहीं पढ़ी, फौरन उठ के जमात से पढ़ेंगे जब वो, मतलब बल्कि और ज़रूरी है। फिर इस तरह वितर की नमाज, दिन की इबादत मगरिब की रकतों पे वितर हो जाती हैं, आठ नंबर, रात की इबादत यानी ईशा को वितर करने के लिए सलातुल वितर जिसको हम कहते हैं, इसको भी पढ़ लें, एक ही है, दो पढ़ेंगे, तीन पढ़ेंगे तो दो नफिल होंगे, पांच पढ़ेंगे तो चार नफिल और एक वितर हो जाएगा। यानी वितर के बारे में, और इसमें हम जो नमाज दुआ पढ़ते हैं कनूत की दुआ, वो भी आपने लिखनी है, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे लोग हैं कि हम तीन दफ़ा कुल वल्ला पढ़ लें, कब तक पढ़ लें, जब तक याद नहीं होती। ठीक है, तो वो अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत, सिर्फ आप उसका तर्जुमा पढ़ लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी जी इनका सवाल है कि पहले आप फ़र्ज़ पढ़ चुके, फिर मस्जिद में गए या जमात हो रही, आप उनकी जमात में मिल जाइए, एक नफिल हो जाएगी, एक फ़र्ज़ हो जाएगी। जी आप
दो क्वेश्चंस, एक तो ये कि जब सफ़र की नमाज़ पढ़ रहे
हो
तो आपकी सफ़र की नमाज़ है लेकिन घर वालों की नहीं।
शाबाश, बहुत अच्छा सवाल है। इमाम यानी नमाज़ पढ़ाने वाला मुसाफिर है, पीछे वाले लोकल्स हैं, इमाम सलाम फेरेगा पहले दो फ़र्ज़ पढ़ के, लोग पीछे बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं, जो ही इमाम सलाम शुरू करेगा फेरना, पीछे उठकर अपनी नमाज पूरी करेंगे। बट ऑपोजिट, इमाम जो है वो मुकीम है, आप मुसाफिर हैं, तो फिर आपको इमाम के साथ पूरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है जी, और जी आप जी, इमाम का वुजू टूट जाए तो हुक्म क्या है कि इमाम के साथ जो लोग खड़े हो ना, वो सबसे ज़्यादा उनको कुरान आता हो, यानी इमाम के करीब बच्चे नहीं होने चाहिए, मजनून और लावबाली लोग नहीं होने चाहिए। और हुक्म क्या है, ये मसलन आप देखें कि ये टिश्यू पेपर है, और पूरी शरीयत ने इसकी वजाहत की है कि अगर किसी इमाम का वुजू टूटे तो रुमाल या कपड़ा नाक पर रखे यूँ, तो उसके साथ वाले दोनों को इतना इल्म होगा, उसको पता लग जाएगा कि इमाम का वजू टूटा है। फिर इमाम क्या करेगा, ऐसे नहीं जाएगा सफ़ों में, ऐसे जाता जाएगा, सफ़ वाले हिलते जाएंगे, ये पीछे जाएगा, और जो पीछे था उनमें से एक आगे आके जमात पूरी कराएगा, ये वजू करके आएगा पूरी, ना अगर हो चुकी हुई, ना हुई तो ये मिल जाए, नहीं है तो बाद में अपनी पढ़ लें। जी
जैसे आपने उर्दू में बताया कि तीन दफ़ा से ज़्यादा नहीं
आता, जी
पढ़ सकते हैं,
ज्यादा पढ़ सकते हैं, थ्री लीस्ट है। जी जी ये भी बड़ा अहम सवाल है हमारे कल्चर में, इस पे भी बहुत गलत फहमी है। मस्जिद में आते ही लोग सुन्नतें शुरू कर देते हैं। देखिए जुमे की नमाज़ में नमाज से पहले कोई सुन्नत नहीं है सिवाय दो हल्के फुल्के तहियतुल नवाफिल के। सिर्फ मस्जिद में जाकर आप दो नफिल पढ़कर बैठ जाइए, दो रकत इमाम साहब के साथ होगी, बाकी दो किधर गई? जोहर की रोज़ तो चार होती हैं, कुछ लोगों को जुमा इसलिए भी बड़ा पसंद है कि दो होती हैं। जी शाबाश, खुतबा इज इक्वल टू। अब मेरा सवाल है, जो भाई बेटे माशाल्लाह खुतबे के बाद आते हैं तो उनकी होती नहीं, खुतबे मिस हो गया, जुमा मिस हो गया, बात वाज़े। बस उसके बाद जब दो हो गई, उसके बाद दो दो करके चार, कट्ठी चार या सिर्फ दो भी पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां भी पढ़ते थे और कुछ सुन्नतें आके घर में भी पढ़ते थे। जी आगे कोई, मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई पढ़ाती। हाँ उनको फिर नहीं पता होगा, औरत औरतों के बीच में ही खड़ी होंगे। जी फिर आप देखिए कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको पता नहीं होगा। ऐसी अगर सूरत है कि औरत मर्द की तरह आगे आके नमाज पढ़े, जमात से कराए, तो नहीं पढ़नी चाहिए फिर आपको, ये आप उनके साथ ना पढ़ें। फिर आप देखिए उस बुक में आप देखेंगे नमाज किस चीज़ से ज़ाया हो जाती है, ये सारा कुछ आपकी उस बुक में है। मैं बावजूद ख्वाहिश के अब करना नहीं चाह रही, क्योंकि हज़रत उस्मान का भी कुछ हक है हम पे, इतनी कुर्बानियाँ करके गए। जी मैंने इसलिए उस बहस को छेड़ा ही नहीं है। जी बस, और जी जी मैं आपका सवाल समझ, देखिए मस्जिद में पहली बात है खुतबे से पहले पहुंचना चाहिए, ये गोल है। वो हदीस सुनी होगी कि फिर वो फरिश्ते भी बैठ जाते हैं सुनने, बिलफर्ज फिर भी लेट है, जो पहले जाए या खुतबे के दौरान आए, दो हल्के नफिल पड़ेगा, दैट्स इट, वो ज़रूरी होते हैं पढ़ने, और उसके बाद बैठ जाएं। लेकिन वहाँ बैठ के सुन्नतों पे सुन्नतें पढ़ते जाना और खुतबा ना सुनना, ये दुरुस्त नहीं है। जी एक छोटा सा, सॉरी एक छोटा सा आप काम लिखें, आप उस बुक से मदद ले सकते हैं, नमाज में क्या काम जायज़ है, 10 आप नोट करके आएँ कल सुबह के रिकैप में, और क्या नाजायज़ है ये 5 कर लें, ठीक है? क्या कर सकते हैं नमाज में और क्या नहीं कर सकते, मसलन जैसे बातें करना, फ़ोन सुनना, मैसेज चेक करना, ये ऐसी बातें। कल शुरू में इस पे इंशाल्लाह रिकैप में कुछ बातें करें। मेरे पास तकरीबन 12 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि काम नमाज में जो कर सकते हैं इज़ अलाउड, और मतों से नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन कुछ काम जो हैं वो नहीं कर सकते, वो तकरीबन पॉइंट्स जो हैं वो भी 12 ही हैं। अब आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं आपको कल बता दूंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है? सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। कुछ चीज़ें इंशाल्लाह शुरू में रिकैप करा के ही आपको आगे लेके चलेंगे। नमाज का टॉपिक तो मेरा ख्याल है 1 महीना चलना चाहिए, बिलीव मी, ये इतना अहम टॉपिक है, ठीक है? चलिए थोड़ा सा खड़े हो जाएं सारे, लाइट बंद करें। आज क्या करा रही हैं फैज़ा? शाहिन आइए, आप जो आपका दिल करता है इनको कराएं, एक्सरसाइज करवा रही हैं।
थक गए।